मैं तो ऐसे कोई मिली आई फोन क्यों अब मैं योग तो होने का इच्छा बढ़ाई
हाँ बड़ा संस्कृत में समझ में आ जाता है।
हाँ संस्कृत में समझ में नहीं आवे बात है हिंदी भाषा लिया किताब इमें तो मैं दूसरो काम है जो के इमें भरी जाए कि मैं एक करके बैठे पढ़ लिया उन्हें दो को पढ़ लिया
चलो कर लो परमपिता परमात्मा से में मंत्र पाठ करेंगे। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अत्र सर्वेषां भवताम् अत्र एकदा पुनः स्वागतम्। चंद्रगुप्त महोदय एकदा पश्यतु अभूत न वा न जायते मध्य
चल रहा है
मूढ़ लगा क्या स्वामी जी के लिए मूढ़ लगा दिए। तो अस्माकं चर्चा ही है अस्माभि चर्चा चर्चिता निपाता नाम विषय चर्चा चलती तत्र नूनम निपाते आसीत नूनम कस्मिन् अर्थे वर्तते अन्य चे पदपूर्णार्थ तद किल वर्तते नूनम न वर्तते अन्य चेत तत्र एका अस्माभिः एका कथा तत्र कथिता नाम आख्यानम। आख्यानस्य कः स्वरूप तत्र वर्तते श्रीधर महोदय
अगस्त्य ऋषि किञ्चित् हवि निर्माप्य इन्द्राय
निर्माप्य न निर्वाप्य
निर्वाप्य इन्द्राय
अगस्त्य इन्द्राय हविर्निरूप्य सम अमृभ्य सम्प्रति सञ्चकार स इन्द्रा एत्य प्रतिव्यञ्चते।
कोऽस्य अर्थ अगस्त्य इन्द्राय हविर्निरूप्य मरुद्भ्य सम प्रतिसञ्चकार स इन्द्र एत्य परिदेव्याञ्चक्रे इन्द्र को अर्थ से को अर्थ किं च प्रयोजनम् तो इंद्र परिदेव्यां चक्र शब्द से को अर्थ है वाक्य से अगस्त्य ऋषि इंद्राय हवि निरूप्य इंद्र देवतायै हवि निरूप्य निर्वापम कृत्वा पश्चात तस्य मनसि किं संजातः मरुद्भ्य सम प्रतिसञ्चकार दातुम इच्छांचकार एक शत हाँ स इंद्र एत्य नाम आगत्य यदा इंद्रेण जातम की किमपि भिन्नम अभूत तो परिदेव्यांचक्रे अस्य शब्दस्य को अर्थ हाँ मन्यु पूर्वकं विललाप विलापम कृतवान चक्र इत्यर्थ। तो हिंदी में बोल देता हूँ, मन्यु मन्यु मतलब ध्यान देने की बात है, वहां भी गुस्सा नहीं है, क्रोध वहां भी युद्ध में भी क्रोध नहीं है। जो मंत्र पहला आता अग्निरु मन्यु, मन्यु मतलब युद्ध में सेनापति मन्यु करता है, क्रोध नहीं करते, ध्यान देने की बात है, क्योंकि क्रोध तो नियंत्रण ही नहीं बचता, मन में लड़ेगा क्या, मर जाएगा उछल कूद में जाके थोड़ी देर में। तो इसलिए मन्यु का विधान में वही कहना चाह रहा था। यहाँ कुछ लोग अर्थ करते हैं कि वो इंद्र आके रोने लगा, ऐसा नहीं है। मन्यु पूर्वकम विललाप है, लल इप्सायाम और विगत लल इप्सायस्य विलाप, अर्थात उसकी जो इच्छा थी उसका विघात हुआ, किंतु उसने क्रोध नहीं किया, मन्यु किया मतलब जान पूर्वक उसने विचार किया एक प्रकार से। क्या विचार किया, ननूनमस्ति, भाई क्यों दुखी हो रहे हो, ननूनमस्ति नो स्व अद्यपि अस्माकं किमपि नासीत् स्वपि न वर्तते एतद् वर्तते जीवन जीवनस्य विज्ञानम्। भवान तत् अत्र आगत्य किञ्चित् जापिष्यति अस्मिन् मंत्र विषये, आख्यानम किम अर्धम भवान करो तो पूर्व, अन्य कोऽपि अस्ति, अभिषेक महोदय अस्ति आगत्य करो तो पूर्वम भवत कीर्तन एकदा न जानम, तो मुख्य मंत्र से तो जानम स्यात्, हाँ किंचित लिखित्वा कथा रूपेण आख्यानम इति किम, पूर्वम आख्यानम वर्तेत ना, अत्र त्रयोविंशति आख्यानानि सन्ति अत्र निरुक्ते, तो एतत् प्रथमम आख्यानम। हाँ अगस्त्य इंद्र और मरुत, पूर्वम त्रयाणाम तत्र नाम लिखितव्यम, अगस्त्य इदानीम अगस्त्य आश्विन मासे अगस्त नक्षत्रे विषयात है ना, आश्विन मासे होती इंद्र कुत्रापि लेखे तो इंद्र मरुत। अस्माकं कथम बुद्धि बुद्धिना कथम अवबुध्यते इति जायते, अब इदानीम केवलम कस्य कंठी कर्तव्यम, केवलम त्रयाणाम शब्दानाम अगस्त इंद्राय मरुत, कथा बुद्धौ सर्वम अवबुध्यते न वा, यदा एकदा पठितम तो बुद्धौ कथम अवबुध्यते, अगस्त इंद्र मरुत कथा अवबुध्यते न वा, त्रिभ्य शब्देभ्य कथा जायते कि किम उक्ते, तो एतद् अस्माकं बुद्धि कथम कार्यम करोति, अस्माकं बुद्धि कथम कार्यम करोति, संपूर्ण पुस्तकस्य यदि एकदा अध्ययनम अभूत, किंतु यदि मुख्य शब्दा बुद्धौ अवबुध्यते इति चेत् तो सर्वम अवगच्छति न वा, त्रिभ्य शब्देस्य किम जायते संपूर्ण कथा मंत्रस्य, कदापि विस्मरणं न भवति यदि एवं कंठी क्रियते इति चेत्। अगर आप इस तरीके से चीजों को याद रखेंगे तो आप जीवन में चीजों को नहीं भूलेंगे। अब तीन चीजें आप देख ले, मंत्र एक बार आपने पढ़ लिया, अभी मैंने पूछा भी नहीं पूरा सबसे, दस दिन बाद भी आप एक महीने बाद भी ये तीन शब्द बोलते आप पूरी कथा सुना देंगे, कारण क्या है, दिमाग कैसे काम करता है, हमने एक आपको शुरू में ये भी कहा था कि वो तरीका भी बताया जाएगा दिमाग जिस चीजों को समझता कैसे है। अष्टाध्यायी केवल दो महीने, अधिकतम दो महीने में याद हो सकती, अधिकतम बता रहा हूँ 15 दिन में भी याद हो सकती है, अगर आपके पास चीजों को रखने के तरीके आए। जैसे मैं पहले भी कह चुका हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि विक्रम जी भी इस बात को समझ ले, उनको ये समस्या है कि मैं कहूँ कि चंद्रगुप्त जी विक्रम जी ये कार्य करो कि मेरा जो सारा सामान है ना उठा के ऊपर नीचे जैसे रख दो कमरे में भर दो व्यवस्थित, नहीं करना। फिर मैं गौतम जी को कहता हूँ कि जाइए गौतम जी और मेरे को निरुक्त निकाल के 1 सेकंड में लेके आइए, तुरंत निरुक्त लाओ निकाल, तो ये निरुक्त निकाल पाएंगे, और व्यवस्थित रखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ऐसे अलमारी में पुस्तकें सजी हुई हैं, और मैं इनको कहूँ कि जाओ गौतम जी निरुक्त निकाल के लाओ, इनको सोचना पड़ेगा। यही दिमाग भी, यही इसी सिद्धांत पे हमारा दिमाग भी काम करता है। अगर हम उसको नहीं जानेंगे, तरीके नहीं सीखेंगे, तो आज याद करोगे कल को भूल जाएंगे, फिर क्या होगा, पुस्तकस्तु या विद्या और कार्य काले। अब जो है कि युद्ध के मैदान में आप अपना हथियार ढूंढ रहे हैं, है ना, तो वही स्थिति होगी कि युद्ध के मैदान में हथियार जैसे ढूंढ रहे ऐसे यहाँ भी होती है। हमारे ऋषि मुनि चारों वेदों को, विज्ञान को आदि करोड़ों अरबों वर्षों तक ये परंपरा को जीवित रखा कि सुनने से ही सब कुछ याद हो जाता, यहाँ विचारने से भी याद नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं संबंध टूटा हुआ है, हम उन तरीकों को, व्यवस्था को नहीं जानते जिन व्यवस्था पे हमारा दिमाग काम करता है। ये बात है, हम उन व्यवस्थाओं को नहीं जानते जिन व्यवस्थाओं में हमारा दिमाग कार्य करता है, इसलिए हमारी स्मृति कमजोर है, क्योंकि हम जानते नहीं स्मृति है क्या और काम कैसे करती है, वो कहाँ चीजें जाके ठहरती हैं। एक उदाहरण और, अस्माकम स्मृति का कौन बताएंगे कि स्मृति कहते किसको हैं? भाई जिसका बचपन से लेके जन्म जन्मांतर से प्रयोग कर रहे हैं उसका तो जान होना चाहिए हैं? स्मृति और चिति चिंता, चिंतायाम न वर्तते, चिति संज्ञा ने वर्तते, ध्याने न, इदानीम चर्चा चलती है अस्माकं बुद्धि बुद्धि न कथम बुद्ध्यते। तो स्मृति और चिति और संज्ञानम नाम सम एक ही भूय, एक ही भूयल उसे लगाए सम एक ही भूय जानम। अगर जिस जान को आपने मन को एकाग्र करके पढ़ा है वो क्या बनेगा? स्मृति बनेगा। और अनुभूत विषय असंप्रमोश योगी राजा, अनुभूत विषय स्मृति को अर्थ है अनुभूत विषय
असंप्रमोश, जो अनुभूत विषय उसका स्मरण होना याद लेना वो स्मृति।
अनुभूत विषयों का याद, अनुभूत विषय कौन से होते हैं?
जो बचपन
जिसको आपने जिया है, जिसको आपने अनुभव किया। जो मैंने बताया कि हमारे 99% विचार ऐसे हैं पूरे दिन के जो अनुभूत विषय वाले, इसलिए मैं पूछूं कल 10 बजे तो बता दें कक्षा में बैठे थे पर क्या विचार कर रहे थे वो नहीं बता सकते आप। और मैं पूछूं कोई आपकी ऐसी घटना सबको याद है बचपन की कि उस काल में क्या हुआ था अभी आप बता देंगे 30 साल पुरानी बात को, कारण अनुभूत विषय आपने जो किया है वही स्मृति में दृढ़ रहता है। ऋषि लोगों की क्या परंपरा थी? जिस चीज को कहते थे उसको जीते थे। वैदिक परंपरा क्या है? जिन जीवन मूल्यों की आप चर्चा करते हैं वो जीवन मूल्य आपके जीवन में होने चाहिए। जब वो आपके जीवन में होंगे, आप उनको जी रहे हैं और उसमें श्रद्धा दिखा रहे हैं, तो क्या स्मृति बनेगी? नहीं बनेगी। बनेगी तो दृढ़ होगी, दृढ़ होगी तो जब चाहेंगे जब निकाल लेंगे उसको। क्यों जी वृद्धि राधे सूत्र आज तक क्यों नहीं भूले आप? तैनिक दीक्षा आगे कौन बताएगा? मतलब जिन्होंने कुछ आवर्ती लगातार जारी अनुभूत विषय वही बता पा रहे हैं, बाकी मौन बैठे हुए। कारण अनुभूत विषय, वृद्धि राधे क्यों अनुभूत हो गया है? क्योंकि पहला ही सूत्र है उसकी इतनी बार आवृत्ति हो चुकी है कि उसको कोई भुलाना चाहे ना 1:47 सिर पे रख के तो भी नहीं व्यक्ति भूलेगा। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, जिस विषय में आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा से क्या होता है? श्रद्धा सत्यम आप्यते मंत्र है, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है और सत्य कभी भूला नहीं जाता है। ध्यान देने की बात है, असत्य चीजें ही भूली जाती है और सत्य कब नहीं भूला जाता? जब वो आपके जीवन में आ गया। तो दिमाग किस सिद्धांत पे काम करता है ये हमने थोड़ी चर्चा की, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, पाठ कर लेते हैं। अब ये 3 चीजें आ गई, अगस्त्य इंद्र और मरुत, इसके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं चीजें दिमाग कैसे समझता है। अगर ये 3 चीजें आपको याद है तो घटना तुरंत याद आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? घटना याद आते ही घटना के जो उसके अंदर वाला जो विज्ञान है, क्या कहना किस कारण से यह घटना है, वो कारण याद आ जाएगा और कारण याद आ गया तो सब कुछ याद आ गया। दिमाग इन सिद्धांतों पे काम करता है, ये हम गुरुकुल वालों को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। धीरे धीरे निरुक्तक होते होते आप लोगों की स्मृति में समझते बड़ी दृढ़ हो जाएगी अगर श्रद्धा रही तो। श्रद्धा या सत्यम ये भगवान का कहा हुआ है, किसी मनुष्य का नहीं। और श्रद्धया हुयते श्रद्धा से अगर आप करेंगे तो मन एकाग्र होगा, मन एकाग्र होगा तो सारी चीजों को दृढ़ रखेगा, अन्यथा सूचनाएं आ रही हैं और सूचनाएं कहाँ जा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, आकाश देश है, हाँ तो वहां भी जाने, वहां तो जाएंगे आपसे रुकेंगे नहीं, पर वो प्रभाव छोड़ के जाएं, वो आपको ध्यान रखना, वो प्रभाव छोड़ के जाएंगे दृढ़ संस्कार बन जाएगा और आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। तो इतना ही कहना था, अब आप समझा दो इस कथा को।
कथा इस प्रकार से थी कि अगस्त ने अगस्त इंद्राय भजन रूप दिया, अगस्त ने इंद्र के लिए हवि तैयार की
जी,
और जब उसको कह दिया उसने मेरी तरफ हवि देंगे
जी,
तो इंद्र के जला हुआ भार आदि की व्यवस्था होगा, तो मरुद दिया, तो जो मरुद वहां से गुजर रहे थे उन्हें संप्रत इच्छा से कहा उसको वो हवि उसने अगस्त में मरुदम के लिए देनी चाहिए, यह बात इंद्र को पता लगी
जी,
तो उसका आगत इंद्र वह इंद्र अगस्त के पास आकर एक दिया आकर के
चक्रिया कोई बात नहीं, मतलब कथा सुना रहे ना, अपने शब्द भी चल सकते हैं, यानी पंक्ति याद हो, तो अब आगे विक्रम जी समझाएंगे कि वो मन्यु पूर्वक विलाप क्या है, हिंदी में समझा दो।
मन्यु पूर्वक मतलब विवेक पूर्वक,
मंत्र को देख के समझा दो, वहाँ इतना तो कर ही सकते हैं भाई, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। अच्छा
रहेगा नहीं, तीनों काल में मतलब नाशवान है,
वो कौन है
सृष्टि सब,
जो भी सृष्टि से निर्मित पदार्थ है, यानी जो प्रकृति से निर्मित पदार्थ है उनके ऊपर घटे,
हाँ कोई किसी का है नहीं,
जो
हमारे पास है वो कल नहीं
रहेगा, नहीं रहेगा,
आगे भी नहीं
रहेगा, इसलिए वाह ठीक बात है जी, देखा समझा दिया पूरी बात, तो ठीक है। तो ये मैं समझाना ये चाह रहा था कि दिमाग किस सिद्धांत पे काम करता है, दिमाग को कोई एक आधार चाहिए जहाँ वो चीजों को स्मृति को दृढ़ रखने के लिए एक आधार चाहिए, और आधार किसका लिया हमने, तीन शब्दों का लिया। अब ये तीन शब्द का अगर आपने आधार बना लिया तो इस तीन शब्दों में जितनी घटनाएं हैं वो आपको तुरंत याद आएंगे, ये पक्की बात है, आप अभ्यास से कुछ दिन में देख लेंगे। तो हर मंत्र का कोई आधार दिमाग में बनाइए, कोई घटना बनाइए, क्योंकि हमारी स्मृति जो है चैत्री की है, चैत्री की स्मृति, ये भी सूत्र समझ लो एक, चैत्री की स्मृति का स्मृति, चैत्री की स्मृति जो चित्र के माध्यम से जल्दी दिमागों को चीजें आती हैं, या शब्द, या भी अगस्त शब्द के माध्यम से जो जल्दी घटनाओं को पकड़ लेती है। मैं आपको दो चार चीजें बताता हूं, आप अपने मन में चित्र नहीं आने देना। महर्षि दयानंद क्यों आया चित्र, मैंने तो मना किया था, चित्र आया कहां से, अन्ना सागर, सुंदरपुर गुरुकुल
आ गया जी मेरे को
मेरे को आ गया, आचार्य जी को आ गया, वो जिन्होंने देखा है। स्मृति क्या है, अनुभूत विषय है, तो आपको भी आ गया,
अमेरिका किसी को नहीं आया,
ना आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मृति किस दादा, अब आपको समझे
जी,
धीरे धीरे चर्चा चलाएंगे, ठीक है जी बैठे पाठ करते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा था आप लोगों की स्मृति बढ़ाएंगे, तरीके बताएंगे, तो वो भी
चल रहा
है,
देखा। तो अस्माभि जातम अस्माकम स्मृति की दृष्टि वर्तते कथम च कार्यम करोति और कथम च तस्य विकास तस्य विकास स्यातिति। अग्रे चलाम का शंका, यदि सामान्य स्यात् चेत् परस्परम् एव निवारणम् स्यात्, यदि विशिष्टा स्यात् तत्र समय नियोजितव्यम्। ही कस्मिन् अर्थे वर्तते, नहीं अत्र कस्मिन् अर्थे वर्तते अनुपृष्टे वर्तते हेतोपदेश मया किम् उक्तम् आसीत् कि इदं हि करिष्यति हि नाम अनेन कारणेन अनेन हेतुना करिष्यति यतो हि अनेन पूर्वमपि कृतं तो कथं न अपेक्षा वर्तते इदं करिष्यति तो केन हेतुना करिष्यति देवदत्त इदं कार्यं करिष्यति मया उक्तं कि भो न करिष्यति एतत् तो जानाति एव न तो भवान कथम उत्तरम दास्यति इदम ही अनेन हेतुना एष एतद् कार्यम करिष्यति यतो अनेन अकार्षित पूर्वमपि कृतम् तो का समस्या वर्तते अत्र जी जी मंगति दान कर्मणा तो मह्यते दीयते यस मघम धनम जिसको दान दिया जाता है वो धन है धन तो हमेशा दान देने के लिए होता है धन में तो स्वामी जी महाराज दधाति धारयति पोषयति यत्तद् धनम जो चीजों की पुष्टि करता है शरीर की पुष्टि करो बल की पुष्टि करो राष्ट्र की पुष्टि करो विद्या की पुष्टि करो घर की पुष्टि करो जो पोषण और धारण करने वाला है तो सूर्य पृथ्व्याम च महद्धनम ये मंत्र है सूर्य में भी और पृथ्वी में बहुत धन है तो पृथ्वी को धारण करने वाला कौन है अंदर जो अग्नि है सोना है चांदी है हीरे हैं लोहा है ये भी धन है बाकी जब हम मनुष्य में अपने लिए घटाएंगे तो उसमें दो धन मुख्य हैं विद्या का धन और मुद्रा जिसमें सोना चांदी ये सारे जिससे हमारे पुष्टि होती है संस्था की पुष्टि किससे होती है जो भी चीजें देता है संस्था को कौन धारण करता है धनी धारण करता है तो सारे धन इसमें घट जाएंगे सामान्य रूप से और ये क्योंकि पूजा कर्म भी है वो व्यक्ति पूजित भी होता है हमारे स्टेजों पे देख लो या दूसरों को पे देख लो आर्य समाज के स्टेज पे देख लें या दूसरे के पे देख लें जो धनदाता है विद्वान वो कोने में बेचारा बैठा रहता है 10-5 मिनट की प्रतीक्षा में और जो धनदाता है उन वो मंगती है पूरे उनको खूब पूजा घंटों तक बोलते रहो कोई रोकने वाला नहीं तो इसलिए धन पूजित है वी चिकित्सा का अर्थ है स्वामी जी महाराज निश्चय और वी चिकित्सा का अर्थ है निश्चय पूर्वक संदेह संदेह जो निश्चय हो चुका था उसमें संदेह पैदा हो गया ये भी नहीं पहले निश्चय हो गया वो निश्चय में ही संदेह हो गया कि भाई मैं पहले मेरे को देने का विचार किया फिर मरुतो को हो सकता है तीसरा भी मिल जाए कोई पहले दीक दोनों को नहीं है अभी सम प्रसिद्धां चकार दातुम इच्छाम चकार देने के लिए इच्छा की दी नहीं है इंद्र को भी देने के लिए इच्छा की थी और मरुत को भी देने के लिए इच्छा की है दिया नहीं है तो उसी में संदेह है कि हो सकता है कि तीसरा भी मिल जाए तो लगे भाई ये इससे अच्छा है तो इसको दे दो
बड़ा काम मन से काम मुख्य
मन में तो जितनी योजना प्रातः काल से जितने विचार आते हैं ना यदि वो क्रिया में हो जाए तो एक दिन जीना मुश्किल हो जाए ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ तो मन में आने से अंदर के सिस्टम को तो खतरा है बाहर वाले को नहीं है प्रातः काल से सायकाल तक कितने विचार आते हैं आपस में अगर वो उद्भुत हो जाए उससे हानि तो है पर कम है क्रिया में नहीं आना चाहिए वाणी तक भी थोड़ा बहुत चल जाता है अब वाणी में आ गया कि ये कर दूंगा तोड़ फोड़ कर दूंगा वो कर दूंगा क्रिया में कर दिया तो वो नहीं आना चाहिए जी 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 निश्चय विनिग्रह अर्थ का निश्चय अर्थ हो एक प्रकार से निग्रह अर्थ में पकड़ने अर्थ में वहाँ क्या आया था पीछे वो उपसर्ग था ये कौन है निपात है तो दोनों के अर्थ में तो अंतर है वो तो किसी धातु के पूर्व में होगा है ना ते प्राग धातु और ये तो स्वतंत्र अपने अर्थ को कहता है वो बिना धातु के अर्थ को कहता है नहीं तो दोनों में अर्थ में तो अंतर रहेगा पर लगभग एक जैसा ही है ज्यादा अंतर नहीं है आज तो कर्म को संग्रह को कह रहे हैं अर्थ का संग्रह करेंगे उसको भी कह रहे हैं मतलब चीजों को पकड़ने अर्थ में ही है लगभग, यहाँ भी उसको पकड़ के रखते हैं जी। उद्देश्य उच्च देश नामना कीर्तनम, नाम कीर्तनम, उद्देश्य क्या है? दिशी उच्चारण, उपदेश भी वही है जो उद्देश्य है, तो दिशी उच्चारण जिसका उच्चारण मात्र किया जाए वो हो गया उद्देश्य, और उद्देश्य में जो होने वाला है वो औद्देशिक है, तो उद्देश्य में होने जिसका नाम कीर्तन किया गया राम लक्ष्मण अर्जुन, ये उद्देश्य है, नाम का कीर्तन है, और इस उद्देश्य में जो होने वाला है, होने वाला कौन है? रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण जो इन दोनों को जोड़ने वाला है वो हो गया औद्देशिकम।
जोड़ने वाला कौन?
चकार, वही तो चल रहे हैं ना कर्मोपसंग्रहार्थ, वही तो चल रहे हैं, तो वो क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य में होने वाला, उद्देश्य क्या था? नाम का कीर्तन, उन दो नाम का जो कीर्तन था राम और लक्ष्मण अलग अलग थे, उनको जो जोड़ने वाला है वो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। तो भवति विग्रहण पृथक्त्वात्, किंतु विग्रह से जब पृथक करेंगे तभी जान होगा राम लक्ष्मण ये जो हुआ है इसको राम लक्ष्मण कैसे हुआ, विग्रहण पृथक्त्वात्, विग्रह से जब पृथक करेंगे रामश्च लक्ष्मणश्च तभी इसका जान होगा, इसलिए ये कर्मोपसंग्रह है। मतलब अगर सीधा पद की बात करेंगे राम लक्ष्मण तब वो इसका कार्य नहीं, कार्य तो ये कर चुका है, किंतु इसको अलग देखना पड़ेगा तोड़ के तभी ये घटेगा रामश्च लक्ष्मणश्च। एक तो नित्य घटना है राम लक्ष्मण, उस नित्य घटना को कृत्रिम घटना बनाना है, तो कृत्रिम घटना कैसे बनेगी? अर्थात राम लक्ष्मण का ये अर्थ कैसे है, राम और लक्ष्मण ये कैसे अर्थ निकला, तो विग्रहण पृथक्त्वात् उसी से निकला। तो आगे चलें जी, आगे चलते हैं, आज पूरा हो जाएगा। अब आप आगे देखें, सीमा हो गया था हमारा, सीम न सीमता आदि, अब आगे अध्याय यह पाठ है अग्रे चलती, तत्र किंचित कर्म कांडम अपि वर्तते, कर्म कांडम नाम है यजुर्वेद, यजुर्वेद नाम है यजुसाम वेद, अर्थात कर्म नाम है क्रिया, तम कड़ी विस्तारे तम विस्तारयति इति कर्म कांड, अर्थात क्रियाया किम लिखितम अग्निमेडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधात्मम अहम पुरोहितम ऋत्विजम होतारम रत्नधात्मम यज्ञस्य अग्निम ईडे, तो यज्ञ का को अयम यज्ञो नाम के तत् ऋत्विजा के कथम किम कुम कुर्वन्ति इति यद विस्तारम आपनोति ऐसा मंत्र तस्य नाम यजुर्वेद। तो अत्र किंचित चर्चा अस्माभि चर्चते, त इति विनिग्रहार्थी यम सर्वनाम अनुदात्तम, त इति एष इत्येतत् पदम इदानीम एतत् पदमे स्यात् इति ये एतत् निपातो न वर्तते, त इति विनिग्रहार्थम, त इति पदम निपातम वा सामान्येन, विनिग्रहार्थम वर्तते पुनरागच्छति, सर्वनाम अनुदात्तम, सर्वनाम अपि वर्तते त्व और अनुदात्तम अपि वर्तते, त्व सम सिम इति अनुदात्तानि, फिट सूत्रे अर्धनाम इति एके, एके आचार्य मन्यन्ते भो अस्य अर्थस्तु अर्धार्थे वर्तते, अर्धनाम अर्धम अर्धमेव भवति, कथमिति उच्यते, यह अत्र सर्वनाम वाची वर्तते तम विषय अस्माभिः उच्यते, अनुदात्तश्च ऋचां त्वपोषमाशते पुपुष्वान् गायत्रं तो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीते उ द्वः। अत्र ऋत्विजां चर्चा वर्तते, अर्थात अत्र सोमयागस्य विषये चर्चा वर्तते, यतो हि ब्रह्मा तत्र इष्टिषु न भवति, अग्निहोत्रे अपि ब्रह्मा न भवति, अस्माकम् अग्निहोत्रे तो भवति, प्राचीन अग्निहोत्रे ब्राह्मण अपेक्षा न वर्तते, केवलं यजमान पत्नी च उभौ कार्यं कुरुतः। अन्य च यदि कदापि अपेक्षा भवती इति चेत तरी अग्निद्र अध्वर्यु ब्राह्मणत्र अपेक्षा न मंत्रापि न संति ब्राह्मण अग्निहोत्रे। तो अत्र विषय चर्चा वर्तते सोमयागस्य। सोमयाग सप्तविध अग्निष्टोम उक्त षोडशी अतिरात्र अप्तोर्याम और वाजपेय। तत्र तेसु सोमयागेषु तत्र षोडश ऋत्विज भवन्ति अधिकम ते तो ऋत्विज भवन्ति एक सदस्योपि भवति सम्मिल्य सप्तदश भवन्ति। अग्रे तत्र चमसा ध्वरा दस तो सम्मिल्य सप्तविंशति अष्टविंशति वा ऋत्विज तत्र भवन्ति सोमयागे। तत्र चतुर्णाम विषये अत्र चर्चा चर्चते इति भूमिका मंत्रस्य। ऋचाम त्वः एकः ऋचाम ऋग्वेदम पोषम पुष्टिम आस्ते तिष्ठति। अर्थात एक ऋत्विज किम करोति सोमयागे ऋचाम पुष्टिम आस्ते अर्थात ऋचाम पोषम करोति। पुपुष्वान पुपुष्वान नाम होता। गायत्रम त्वा गायति शक्वरिषु एक गायत्रम गायत्रम नाम साम गानम एक गायति शक्वरिषु। शक्वरिषु नाम ऋक्षु विशेषणम कस्य वर्तते ऋच। शक्वरिषु ऋक्षु एक गायत्रम नाम साम गानम गायति नाम उद्गाता। ब्रह्मा त्वा वदति जात विद्याम व्यज्यस्य। ब्रह्मा एक ऋत्विज सर्वे जानन्ति एव। वदति जात विद्याम जाते जाते विद्याम वदति जाते जाते उत्पन्ने उत्पन्ने कथमिति भो एवं करोतु एवं मा करोतु। एषा क्रिया अनेन प्रकारेण कर्तव्य कह वदति ब्रह्मा। तस्य अनुमति द्वारा सोमयागे कार्याणि भवन्ति। यज्ञस्य मात्राम विमिमीते उत उ निश्चयेन तु एकः। एक यज्ञस्य मात्राम विमिमीते नाम विभागम करोति एषा क्रिया कदा कर्तव्यम कथम कर्तव्यम और अस्याम क्रियायाम किम किम भवति कोचस्य रहस्यम किंचस्य रहस्यम एवं एवं करोति तस्य नाम अध्वर्यु। तो चत्वार मुख्य ऋत्विज भवन्ति किंतु लेखनम कुर्वन्तु जानम तो शाते तत्र चत्वार तत्र गणा भवन्ति एक एकस्य गणस्य चत्वार ऋत्विज तस्मात् षोडश ऋत्विज सोमयागे भवन्ति। प्रथमं नाम अध्वर्यु गण तस्य नाम प्रथमं ऋत्विज नाम यस्य दक्षिणा सम्यक नियते तस्य नाम अध्वर्यु मुख्य ऋत्विज। द्वितीयस्य नाम प्रतिप्रस्थाता प्रतिप्रस्थाता तस्य सहयोगी ऋत्विज अध्वर्यु। तृतीयस्य नाम नेष्टा। चतुर्थस्य नाम उन्नेता गण पूर्ण अध्वर्यु गण संपूर्ण। द्वितीय गण उन्नेता उन्नेता सर्वे ध्यानेन एतेषां स्मृत्यपि सात बुद्धौ अग्रे देवत्काण्डस्य कार्यं चलति अधिकम् और अहम् एतदपि जामिष्यामि इदानीं न कि एते ब्रह्माण्डे कुत्र सन्ति केवलम् एते ये ऋत्विजा सन्ति ये सोमयागे कार्यं कुर्वन्ति एते देवानां प्रतिनिधयः न तु स्वतन्त्ररूपेण कार्यं कुर्वन्ति। अग्नि वै होता आसीत् एवम् अग्नि किं वर्तते ब्रह्माण्डे अग्नि यद् कार्यं करोति तदेव अत्र सोमयागे होता कार्यं करोति इति विज्ञानम्। इदानीं न जापितास्मि अग्रे कदापि अधिकं कालम् अपेक्षते पाठमपि कर्तव्यम्। अग्रे चलामः द्वितीयगणः ब्रह्मगण। तस्य ब्रह्मा प्रथम ब्राह्मणाच्छंसी संसी है छंसी हो जाता है। द्वितीय नाम द्वितीय गण ब्राह्मण गण ब्रह्मगण हाँ, अर्थात जो ब्रह्मा का गण है उसमें भी चार ऋत्विज हैं। प्रथम तो ब्रह्मा हुआ, दूसरा हुआ ब्राह्मणा छंसी, ब्राह्मणम संसति थी ब्राह्मणा छंसी। पहला ब्रह्मा हो गया, सबके गण में पहला वही होगा जिसको आप जानते हैं, चार जानते हैं ना चार तो आप, हाँ। उसके बाद ब्राह्मणाच्छंसी लिख लिया, आग्निध्र और पोता अंत में दो है, आग्निध्र और पोता, आग्निध्र और चतुर्थ पोता इति पूर्ण गण। पोता पोता लो हिंदी में बोलते हैं ना पोता, हाँ। पुनाति पूयते वा ने नैति पोता। तृतीय गण है होत्री गण, प्रथमा होता, होत्री गण लिख के एक संख्या डालना, जो पहला मुख्य ऋत्विज है इसमें होता है। और द्वितीय ऋत्विज है मैत्रा वरुण, मैत्रा वरुण, इसका नाम कोष्ठ में कर लेना प्रशास्ता, कोष्ठ में करना, दोनों नाम प्रचलित हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। प्रशास्ता तालव्य तृतीय, ये द्वितीय हुआ है जो मैत्र वरुण, उसका नाम प्रशास्ता भी है कि ध्यान रखना ये, क्योंकि मैं इसलिए सारी चीजें लिखवा रहा हूं क्योंकि जब आपको ये याद रहेंगे तो मुझे इस ब्रह्मांड को समझाने में बड़ी सुविधा होगी, ये आपको ये 16 याद रहे तो, क्योंकि कौन सा क्या काम करता है, इसका प्रतिनिधि कौन सा देव ब्रह्मांड में, हम उसकी भी चर्चा करेंगे पर अभी नहीं, देवत कांड में। अच्छा वाक ये इसका तृतीय है, हाँ, अच्छा शोभना वाक यस्य, जिसकी वाणी बड़ी सुंदर है, हाँ चारु वाक। ग्रावस्तुत ये पत्थरों की स्तुति करने वाला है, पत्थर भी हैं ब्रह्मांड में घूम रहे हैं पर हम जानते नहीं। ग्रावस्तुत लिख लिया, तीन गण पूरे हो गए, चौथा गण लिखिए उद्गात्री गण, जो साम गान करने वाला, अर्थात जिसका संबंध जो है वो सामवेद से है, अर्थात ये घटना सामवेद में हो रही है और सामवेद से जो पदार्थ संबंधित हैं उनमें घटना हो रही है। पहला गण नाम है उद्गाता, आप जानते ही हैं, दूसरे का नाम है प्रस्तोता, ये भी साम गान करता है, तीसरे का नाम है प्रतिहर्ता और चौथे का नाम है सुब्रमण्य स्वामी। नहीं, वो नाम दक्षिण भारत में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां सोमयाग बहुत करते हैं। सुब्रमण्य आगच्छ, इंद्र आगच्छ, हरि आगच्छ, सुब्रमण्य, ये चौथा ऋत्विज है। हाँ, स्वामी तो मैंने बोल दिया, एक प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, बाकी सुब्रमण्य, ये सारे हमारे स्वामी हैं अंतरिक्ष में जो भी घूम रहे हैं, ये सामगान करते हैं स्वामी, हाँ स्वामी जी महाराज, ये चारों सामगान करते हैं, ये नित्य पदार्थ भी है। ध्यान देने की बात है ये, क्योंकि हमारी परंपरा टूट चुकी है, ब्राह्मणों पे कोई ध्यान देता नहीं, ब्राह्मण समझ में भी नहीं आते जो कर्म से नहीं पढ़ते, तो ये सारे नित्य पदार्थ हैं, जो अग्नि होता जो काम करता है, जो हमारा यहाँ नाम होता है उसका ब्रह्मांड में नाम अग्नि है, जो यहाँ अध्वर्यु है उसका ब्रह्मांड में नाम चंद्रमा है, ऐसे ऐसे कथा है। अभी मैं शक्ति ब्राह्मण की उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसी में लिखकर रह जाएंगे, अभी तक बुद्धि वैसी बन जानी चाहिए इनको समझने के लिए, तभी चर्चा करेंगे। तो ये तो मैंने लिखवा दिया आपको अतिरिक्त की याद रहे कि अध्वर्यु वो मुख्य होता है, चारों वेदों का होता है पर मुख्य रूप से वो अथर्वेद का तो विद्वान होना ही चाहिए, और ये होता ऋग्वेदी होते हैं चारों, मतलब ऋग्वेद की जो घटनाएं हैं, ऋक भी ध्यान देने की बात है, ऋक भी एक पदार्थ है। ऋग्भय जातः सर्वम मूर्तिमन्तम आहु, जितने भी ये पदार्थ दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मांड में बने ऋक से बने, ऋग्वेद से नहीं बने, ऋक से बने, वेद तो बाद में जोड़ दिया गया। ये नित्य पदार्थ भी हैं, जैसे हमारे भी नाम है, अब जैसे मेरे ही नाम सनत कुमार है, इनका नाम गौतम है, ऋषियों के भी नाम है, ऐसे ही सारे नाम कहाँ से लिए गए, वेद से लिए गए। मनु जी कहते हैं ना कि सबके नाम जो है वो वेद से आए हैं, तो वेद में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें जो घटनाओं के नाम से उनसे ही नाम रखे गए। यहाँ आर्यों के नाम की बात चल रही है, मुल्ला नसरुद्दीन की बात नहीं चल रही है।
सारे नाम,
सारे नाम मतलब मनु जी कब पैदा हुए थे, जब आर्य ही थे दुनिया में। अब ये चिंटू पिंटू वेद में कहाँ है? हैं? तो फिर उसका निर्वचन हो गया सत्यम ददाति, सत्य रूपी देवाम ददाति थी सत्य देव। दो देवता नहीं है वो, दिव्यति वहाँ दिव्यति क्रिया है, सत्य ने दिव्यति थी सत्य देव, जो सत्य के द्वारा ही दीप्त हो रहा है। अब वो तो जो वेद में है तो माना जाएगा, नहीं है तो कैसे माना जाएगा?
मित्रावरुण आते लगे।
हाँ मित्रावरुण है। आगे चलते हैं जी, इसी बात में उलझ जाएंगे। तो ये हमने थोड़ा आपको कर्मकांड के बारे में कि ये चीजें कैसे घटती हैं और कैसे समझ सकते हैं, और जिस दिन आपने इन घटनाओं को जान लिया, मैं नहीं लगता कि आप लोगों के जीवन में कोई समस्या बचेगी, क्योंकि फिर आपको सारा प्राकृतिक पदार्थों का ज्ञान होगा, इनमें थोड़े उलझे रहेंगे, इनसे ऊपर भी जाना, पहले तो इनको जानना जरूरी है तत्व के रूप में। अब आगे चलते हैं, इनकी व्याख्या देखते हैं। महर्षि की यास्क ने इस मंत्र की क्या व्याख्या की है, का व्याख्या करता यास्क ने? इति ऋत्विक कर्मणाम विनियोगा माचष्टे, अस्य मंत्रस्य विनियोग कुत्र ऋत्विक अर्थात ऋत्विज किम किम कुर्वन्ति उच्यते ऋचामेक पोषमास्ते पुपुष्वान होता व्याख्यास्माभिः कृता। पुपुष्वान क्या वर्तते? होता, और पुपुष्वान नाम है पुनर् पुनर् पोषयति। पुपुष्वान मंत्रे पठितम, पुपुष्वान नाम है कहा, पुपुष्वान होता कर्त्री वर्तते, और होता किम करोति? पुपुष्वान होता किम करोति? पोषम आस्ते अर्थात अस्य पुष्टिम कार्यति करोति च। हाँ उच्चार्यति ऋच ऋक कदा विकास समापनोति यदा तस्य प्रयोग भवति। स्रोतुम इच्छति अस्तु तरी जाप्यामि सोमी आगे वा इष्टि सूच है प्रयोगी रूपेण जाप्यामि चत्वारा अत्र आगच्छन्तु अग्रे अग्रे भवान पृच्छति भवान एव आगच्छतु चतुर्नामे अत्र अपेक्षा वर्तते। हाँ एकस्य मुख तस्मिन् पक्षे स्यात्। हाँ होता भवान होता भव ऋग्वेदि वर्तते। हाँ एषा होता है ना, भवान अध्वर्यु किंचित दूरम तिष्ठतु, भवान एनम नयतु एतद् इष्फय वर्तते अत्र तिष्ठतु अस्य पुरस्ताद् मुखम स्यात् है ना। अभूत भवता तो अधिकम कार्यम इदानीम न वर्तते, ब्रह्म वर्तते ना, तो तत्र भी स्थातुं शक्नोति निर्देशमेव कर्तव्यम्। हाँ अस्य मुखम कुत्र वर्तते? पूर्व दिशि, तो होतु मुखम कुत्र स्यात्? पूर्व दिशि स्यात्। अस्य मुखम कुत्र वर्तते? हाँ अस्य मुखम कस्मिन् दिशि वर्तते? एष आग्निध्र एष होता एष अध्वर्य कथम प्रयोगम भवति होता किम करोति इति एषा वार्ता एष वदिष्यति ओ श्रावय
ओ श्रावय
वदतु अस्तु श्रोषत
अस्तु श्रोषत
श्रोषत श्रोषत
श्रोषत
ओ श्रावय
ओ श्रावय
अस्तु श्रोषत
अग्ने अनुब्रो भवान भवान वदतु अग्ने अनुब्रोहि
अग्ने अनुब्रोहि।
अब होता क्या करता है वो बता रहे हैं, ये दोनों का कार्य आपका पूरा होगा, इनका कार्य है। बोलो कोई अग्नि देवता की ऋचा बोलो। अग्नि अग्निमूर्धा दिवैकक उत्पत्ति अपामृतांश जिनोतो, उसके बाद में ये हुई, इसको यहां भी आएगा ये, इसका नाम है पुराणवाक्य। क्या नाम है? अग्नि मूर्धा दिवय ककुत्पति अपाम रेतांसी जिनवतोम, इसका अर्थ है कि अग्नि की प्रशंसा हम कर रहे हैं, प्रशंसा करके मतलब अग्नि को बुला रहे हैं। होता का काम क्या है कि अग्नि देव ये देवताओं को बुलाता है, ब्रह्मांड में भी उसका वही कार्य है, और आपका कार्य क्या है कि आप इनको रक्षक के रूप में रखे, ओ श्राव सावधान हो जाओ हम क्रिया करने वाले, तो ये तलवार है इनके हाथ में, तलवार लेके खड़ा होता है ऐसा समझना चाहिए। वो तो हम जब जब दर्श ये पढ़ाएंगे शतपथ ब्राह्मण तो पूरी क्रिया करा के दिखाएंगे सारी, तो अब ये होता क्या कर रहा है, ब्रह्मांड में जो होता कर रहा है वही कर रहा है। जब आपने कहा अग्नय अनुग्रूही, इसका नाम है पूर्व अनुवाक्य या अनुवाक्य, मतलब देव जब हमारे यहाँ अतिथि आता है तो हम क्या कहते हैं, आइए बैठिए, उसके बाद ही तो खिलाते हैं। तो ये ऐसा ही है कि हे अग्नि देवता, आपके लिए हमने सारी चीज सज्जित की है, आप आइए। तो ये बुलाएंगे, ये इनका कार्य, क्योंकि अग्नि के स्वरूप है, ये अग्नि के प्रतिनिधि यहाँ है और आप चंद्रमा के प्रतिनिधि हो। फिर जिससे आहुति देते हैं वो मंत्र है, उसका नाम है याज्ञा। उन मंत्रों को क्या बोलते हैं, याज्ञा। तो इसमें कहा ना ऋचाम एक है पोषम आस्ते पुपो, ये कैसे पुष्टि करता है, क्योंकि ये अग्नि खुद है और अग्नि सारे देवताओं को पुष्टि कर रहा है। अगर अग्नि में आहुति ना डालें तो किसी देवता को मिलेगी क्या? तो ये जो काम अग्नि यहाँ कर रहा है वो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे अग्नि इस ब्रह्मांड में कार्य करता है। दूसरे याज्ञा, ये पुराना वाक्य समझ में आ गई, अग्नि मूर्धा दिवैक उत्पत्ति अपाम रेतांश जिन बताओ, ये आ गई। उसके बाद में जिस मंत्र से आहुति देंगे उसका नाम है याज्ञा। याज्ञा नाम है ये जितुम योग्य इष्टुम योग्य। तो आप फिर इनको बोलेंगे अग्निम यज, हाँ
अग्निम यज,
अब गायत्री वो बोल दो अग्निमीड़े पुरोहितम।
ओम अग्निमीड़े पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। वो शट।
अब आप आहुति देंगे वहां खड़े होकर, क्योंकि इसमें देना आपको हवनि अग्नि में। तो समझ में आगे क्या करते हैं, ब्रह्मांड में वही अग्नि कर रहा है। ये बिना शतपथ ब्राह्मण के चीजें समझ में नहीं आती, और नहीं आती तो खुलता नहीं, फिर ऊपर ऊपर से जाता होगा, कोई होता बैठा होगा, कुछ कर रहा होगा। जैसे आर्य समाज में अपना होता बैठे रहता है, सब काम यजमान ही कर लेता, बेचारे बैठे ही रहते। तो ये है घटना, इनको तो ऐसे सारा था, आपने तो सोमयाग देखा था ना हमारे साथ। जब ये शतपथ ब्राह्मण चलेगा तो पूरी घटनाएं चलेंगी कि हो क्या रहा है, प्रोजेक्टर पे भी चलेगी तभी वो सारा समझ में आएगा, और मंत्र क्या कह रहा है। अब ये मंत्री यहाँ क्यों विनियोग किया, फिर ये कौन सी घटना है, ये प्रातः सवन की अर्थात सृष्टि के प्रारंभ जब हुई थी तब की है, बीच में बन चुकी थी तब की है, माध्यम सायं सवन की है जब बन चुकी थी तब की घटना है। तो सारा रहस्य तभी खुलता है, इसलिए हमारा विज्ञान इतना महान था कि सारे इसको जानने वाले थे, छोड़ दिया तो नहीं बचा। ठीक है तो बैठ जाइए। तो समझ में आ गई जी कौन सी घटना है
जी।
आपका क्या नाम था?
नहीं वो
आद्रिधा आग्निध्र।
हाँ
याद रखना अपने नाम को। ब्रह्म ने तो देखा ही, इसका तो काम ही देखना है ब्रह्मा का निर्देश करे, वो मैंने कर दिया क्योंकि ये जानते नहीं थे, करना तो नहीं को था। तो ये चार ऋत्विक इष्टि में होते हैं, ये चार ऋतु जिनके नाम इष्टियों में होते हैं, अग्निहोत्र में नहीं होते। जैसे दर्श पूर्णमास इष्टि हमारे यहाँ तो दुहावती दे लेते हैं, वो चार घंटे साध्य क्रिया का नाम है। हाँ दर्श अमावस्या पूर्णिमा पूर्णमासी, और उसमें चार से ही काम चल जाता है, और सोमयाग में सोलह होते हैं। ये घटना इष्टि में भी होती है और ये घटना सोम में भी होती है, और ये घटना निरंतर ब्रह्मांड में हो रही है। उसी को बताने के लिए जैसे रामायण क्या है, अगर हम रामायण को अभी बताना पड़े, अब चाणक्य नाटक आया था, क्या घटना हुई उस काल में उसको बताना पड़े, तो चैत्री की मेमोरी है वो तभी चीजों को समझती है। तो ऐसे ही ये घटना है जो हमारे जितने भी अज्ञ ब्रह्मांड की नित्य क्रिया को बताने के लिए, और इनका रहस्य भी है। तो आगे चलते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि होता क्या करता है। गायत्रम एको गायति सक्वरीषु उद्गाता, एक है गायत्रम सामगानम, साम नाम है ऋच्य द्युड़ सामगियते, काशिका में आपने पढ़ा है, ऋचाओं पे चढ़ा करके जो गाया जाता है उसका नाम साम है। तो वो सामगान कौन करता है, उद्गाता है, उसके तीन सहयोगी। गायत्रम एको गायति सक्वरीषु उद्गाता, सक्वरीषु ऋक्षु, सक्वरी नाम ऋचाओं का है, वो सक्वरी उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मन में बुद्धि में ब्रह्मांड में सामर्थ्य पैदा कर देती है, उनके उच्चारण से दिव्य ऊर्जा पैदा होती है। आपको पता है उच्चारण से भी ऊर्जा पैदा होती है, ये है तरंगित चीजें। उदाहरण में हर चीज का समझाऊंगा, जैसे यहाँ कोई अच्छा जोशीला आर्य समाज का भजन चल जाए तो क्या होगा गौतम जी,
जोश
जाएंगे।
जाएंगे।
क्यों क्यों हर चीज पे जब तक ये विचार नहीं करोगे क्यों चीजें नहीं खुलेंगी।
उस टाइम हमारे जो
भाव, वो भाव क्या है जिनको उदागर किया है, भाव बता दो। हमारे अंदर जो है आठ घटनाएं हैं, घटनाएं मतलब अस्थाई भाव, ये भी जब तक भरतनाट्य मुनि का शास्त्र नहीं पढ़ते चीजें भी नहीं खुलती। वैसे जो सामान्य साहित्य पढ़ लेते हैं उनको भी खुल जाती है, जैसे ये इनको याद है, सामान्य पढ़ोगा वो तो इन्होंने पढ़ा नहीं होगा क्योंकि वहीं से लिख रखी है। तो उसमें जो हमारे अनुकूल है मतलब हम ऐसा चाहते हैं तभी तो बुझाएं फड़केंगे, या कब फड़केंगे कि हमारे विपरीत कोई क्रिया हो रही है, कि हम उसके विपरीत, हमारे मन में जान है उस जान के विपरीत क्रिया में तब फड़केंगे, या हमारे अनुकूल हो तब हमें आनंद आएगा और वहां विपरीतता हो तब ऐसा होगा। तो ये क्यों होता है, ये तो आपने बता दिया, ऐसा होता क्यों है नहीं, विज्ञान बताओ, जीवन विज्ञान है, ये जीवन विज्ञान है। जब इस जीवन विज्ञान को नहीं जानेंगे और कैसे इसको रोका जा सकता है, कोई थोड़ी, जैसे हमारे आदरणीय आचार्य महिपाल जी हैं, सभी जानते हैं लगभग परिचित, अखंड ब्रह्मचारी हैं, बड़े अच्छे विद्वान भी हैं, उनको कोई ऐसी बातें उनके सामने चला दी जाएं जो भाई ऐसे हमारा वेदों का विनाश किया गया, ऐसे किया गया, हम ऐसे गुलाम हुए, वो रोने लगते हैं, कितने विद्वानों को मतलब आंखों से पटपट आंसू गिरने लगते हैं, तुरंत दो मिनट नहीं लगती उनको। ये क्यों होता है, किसी को कुछ नहीं होता, ये है तरंगे। हमारे दिमाग में हर प्रकार के एक सूचनाएं हैं, उस कोण से भाव को कौन सी तरंगे जागृत करती है वक्ता के ऊपर बहुत कुछ होता है। अब राम और पूज्याचार्य सत्यनंद जी कहा करते थे, भाई राम और रावण का युद्ध हो रहा हो, राम ने रावण को मारा, ऐसे धीरे धीरे खून निकला, तो किसी को कोई प्रभाव पड़ेगा? आचार्य जी कभी कभी बड़ा अच्छा सुनाते हैं मतलब, तो वीर रस होना चाहिए कि राम ने रावण को ऐसे उठाया, ऐसे तीर चलाया, और रावण भी इतना बड़ा था, खून की धाराएं बह गई, है ना, हाँ, हड्डी जब चढ़ गई तो इतने भयंकर बादल की तरह गर्जी। तो क्या होता है, वीर रस की बात वीर रस से होती। तो एक होता क्यों है ऐसा कि आप उससे तो प्रभावित नहीं, जिसने जोश दिया वक्ता सबको अपने बस में कर लेता है, अगर वो परिस्थिति जन्य वक्ता हो, किस परिस्थिति में क्या बोलना है ये जानता हो, और इन आठ भाव का प्रयोग करता हो जो आठ स्थाई भाव है, तो सारे समाज को, राष्ट्र को, विश्व को, और उसके अंदर पवित्रता, ये पहली बात है, क्योंकि उछल कूद मचाने वालों का ज्यादा प्रभाव नहीं होता, वो भी कुछ दिन में समझ पता लग जाता है कि इसका जीवन में क्या है नहीं है, और ये बोल कहां से रहा है, थोड़ा बहुत किसी सामान्य जनों पर प्रभाव होगा तो वो कुछ दिन में विपरीतता में चला जाए। जीवन में वैसी घटना आपके अंदर होनी चाहिए, तब वैसी घटना को आप चाहेंगे तो लोगों में प्रभाव पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो तरंगे हैं वो आपके अंदर पहले से मौजूद हैं, तो जो उन्हीं तरंगों के माध्यम से जो अब ये तरंगे निकली, ये उसके उस हिस्से को जाके उसने जागृत कर दिया, तो व्यक्ति प्रभाव हो गया। इसलिए शमशान वैराग्य क्या होता है, वो होता क्यों है, आप लोग वहां तक पहुंचते नहीं, क्योंकि वो मेधा वाला स्थिति अब धीरे धीरे बनेगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो वो यूं होता है कि वो जो तरंगे थी उस काल में, उस वातावरण में वैसी तरंगे जागृत होगी, वो वैसी जागृत होते थोड़े दिन में लगा कुछ नहीं, मुझे भी मर जाना है, वो है ऐसे मेरे को भी जड़ेंगे, तो तरंगे जो है ना वो अत्यधिक सुप्त हो गई है, उनको जगाने के लिए थोड़ा है, तरंगे का अर्थ है ऊर्जा के केंद्र, संस्कारों को जागृत करने वाले भी तो तरंगे वैसी चाहिए, वो तरंगे जिस वातावरण में फैलेंगी। अब ये विद्युत है, ये मोटर, में हमेशा उदाहरण देता हूँ, मोटर है, पंखा लगा लो, जितनी वोल्टेज पे काम करते तरंगे तो हमारे क्या, विद्युत तरंगे तो है, तो उससे कम मिलेंगी तो क्या करेगा, नहीं मिलेंगी, और वैसा वातावरण मिलेगा उसको जितने पे चाहिए, और ज्यादा मिलेगी तो क्या करेगा, हाँ। तो कभी कभी जब सामान्य स्थिति से ज्यादा मिल जाती है तो दुनिया से वैराग्य भी हो जाता है, फिर वो तरंगे वहां आते परिवार को देखते हैं, सबको देखते हैं, वो दब जाती है और फिर वो सामान्य तो हो जाते, ये इसी के ऊपर आधारित है। तो मंत्र यही काम करता है, मंत्र पवित्र मुच्यते, मंत्र बोलने से और सुनने से पवित्रता का क्या संबंध है, मंत्र तो एक शब्द है, क्योंकि इससे जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, कोई सहस्वर करे तो, वैसे हमारी परंपरा से कुछ तो होती होंगी बिना सहस्वर भी, क्योंकि शब्द का तो उच्चारण हो रहा है, हाँ, एक सुरती से भी कुछ होती होंगी या ज्यादा भी हो सकती हैं क्योंकि सब मिला हुआ चल रहा है। तो उसमें यही होता है, पवित्रता कैसे आएगी, क्योंकि मंत्रों के अंदर जो सूचनाएं हैं, मंत्र जिन ध्वनि तरंगों पे काम करते हैं वो सत्व वाली है, ध्यान देने की बात है, वो सात्विक विभाग को जगाएंगे। जब आपका सात्विक विभाग जागृत होगा तो आपके अंदर क्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, विकास होगा, विनाश नहीं होगा। इसलिए मंत्र पवित्रम पुनाति अनेन इति, इसलिए मंत्र से पवित्रता आती है। अश्लील भाषण व्यक्ति करता है, दूसरे चीजों को बोलता है, गाली देता है, उससे क्या होता है, गाली तो एक शब्द ही तो है, मंत्र भी एक शब्द है, तो उससे अपवित्रता कैसे आती है। वो ध्वनि तरंगे किस क्षेत्र को जागृत करेंगे, जहां ये सारा कबाड़ा भरा हुआ है, ये तो बात है ना। तो वो जब सारा कबाड़ा जागृत होगा तो किसको जागृत करेगा, वो असुरों को, असुर प्राण को जागृत करेगा। जब असुर प्राण जागृत होगा तो क्या करेगा, तो ये पूरा ही विज्ञान है हमारा। तो मैं तो दिया ना, यही बोलता हूं हर जगह कि हमारा तो जो वैदिक धर्म है ना, जीवन जीने का विज्ञान है, धर्म नहीं है, जीवन जीने का विज्ञान है, उसी का नाम धर्म है। हर चीज हमारी विज्ञान से जुड़ी है, किसी भी नमस्ते करो, चोटी रखो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद लो, हर चीज का एक विज्ञान है, ये सब ध्वनि तरंगों पर आधारित। चलो आगे चलते हैं, शतपथ पे ही खुलती है पूरी बातें। मैं तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ बात यह आई थी कि इससे गाने से क्या होगा, शाम गानों, तो उस क्षेत्र की ध्वनि तरंगे, और यही नहीं करेंगी, ब्रह्मांड में जो साम नाम का पदार्थ है उसकी ऊर्जा को भी बढ़ाएंगे, ये भी बात ध्यान देने की है, उसकी ऊर्जा का भी विकास होगा, वो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ जो घटना हो रही है उसकी सूचना जो है आदित्य लोक में जा रही है। जो भी हम बोल रहे हैं, तरंगे हैं जो यहां से सूर्य रश्मियां ले जाती हैं, वो घटना जो है वो आदित्य वर्णम तमसे प्रस्तात, और हमारे मन में तो उसका प्रभाव पड़ ही रहा है। आगे चलते हैं, गायत्रम गायते स्तुति कर्मण, गायत्रम को गायत्रम क्यों कहते हैं, गायत्रीदम गायत्रम, और गायत्र से क्या होता है, स्तुति कर्मण, इसलिए गायत्री छंद जो है जिसमें हमारा गुरु मंत्र है, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे व्याकरण लगा के जब वो आएगा, उसमें बहुत रहस्य, यही गुरु मंत्र क्यों बना 20,379 मंत्र में, 88 को क्यों, 76 तक को क्यों छोड़ दिया, 78 तक को, एक इसी को क्यों गुरु मंत्र माना है हमने, इसमें क्या रहस्य है ऐसा, तो वो भी बिना व्याकरण के नहीं खुलेगा। और देखें, शक्वरी या ऋचा शकन होते, शक्वरी को ऋचा कैसे होते, शकन होते, शकन होते शक्लरी शक्तौ, अर्थात सामर्थ्यम उत्पादयति, जो मैं पूर्व मुक्ता में वासी तस्मात शक्वरी, तद यद आभि वृत्रम अशकत हंतुम, आभि रिक भी वृत्रम शत्रुम असुरम अशकत समर्थो अभूत, किम करतुम हंतुम मारनाय, तस्मात् शक्वरीणाम शक्वरित्वमिति विज्ञायते, तस्मात् एतेषां ऋचां नाम शक्वरीति उच्यते। घटना का घटना, वृत्रहननस्य घटना, तेन हेतुना शब्दस्य निर्माणं किम् अभूत, शक्वरी, अर्थात संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा अनेन कारणेन वर्तते, यत्र शब्दा घटना युक्ता, अर्थात एवं भवत्येव खलु तदनुसारेण नामकरणं कृतं ऋषिभिः। ब्रह्मा एक है जाते जाते विद्याम वदति, एक है ब्रह्मा जाते जाते, जाते नाद्यात नाम जनि प्रादुर्भावे जाजनोर, जाते जाते उत्पन्ने उत्पन्ने सति किम भवति विद्याम वदति, भो अस्य रहस्यम एतद् वर्तते, अस्य रहस्यम एतद् भो आचमनम करोति, हाँ कुर्वन्नस्मि, ब्रह्मा किम करिष्यति आचमनस्य पश्चात, कोस्य रहस्यम, का विद्या आचमनम कथम केन हेतुना कर्तव्यम यज्ञात पूर्वम, कै वदति ब्रह्मा, ब्रह्मा चतुर्वेदवित भवति, सैव जातुं शक्नोति कि अस्याः क्रियाया किम रहस्यम, पुनः ऐसा घटना अत्र वर्तते, सा घटना अंतरिक्षे ब्रह्मांडे कुत्र वर्तते, सा वार्ता अद्यत्वे तो गता वेद विद्या गतम धर्मशास्त्रम गतम रे गतम न्याय शास्त्रम च नूनम, अग्रे किम वर्तते इदानीं तनानाम जनानाम प्रवृत्ति सुबन्ते रामे रामौ राम तिगन्ते गच्छति गच्छते कदाचित सुबंते भी भवति पाक पाकौ कृदंते, कब कभी कभी प्रयोग होता है। तो वेद विद्या तो चली गई, गता वेद विद्या गतम धर्मशास्त्रम, क्योंकि धर्मशास्त्र पुस्तक तक रह गया, जीवन में नहीं आया। जबकि धर्म का अर्थ है धारणा धर्म इत्यादि, जो हमारे जीवन में है वही धर्म है, बाकी तो सूचना है। तो गता वेद विद्या गतम धर्मशास्त्रम, गतम रे गतम न्याय शास्त्रम च नूनम, न्याय शास्त्र भी चला गया। न्याय शास्त्र क्या करता है, न्यायाधीश का कार्य करता है। आज हर व्यक्ति वकील का कार्य कर रहा है, उसकी बात सुन ली, हाँ ऐसे ही होगा। मतलब जिसके साथ में घटना है उससे पूछे नहीं, न्यायाधीश क्या करता है दोनों पक्षों की सुनता है। काम किसका हो रहा है सब जगह, वकीलों का हो रहा है। तो वकील का तो कार्य क्या है, लड़ाना, ताकि उसकी वृत्ति बनी रहे। गतम रे गतम न्याय शास्त्रम चेनूनम इदानीन तना नाम जना नाम प्रवृत्ति, आजकल के मनुष्यों की ब्रह्मचारियों की अधिकतर प्रवृत्ति क्या होगी, सुबंते तिगंते, थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ लिया, रामे रामो रामा रूप रट लिया, कोम दे थोड़ी पढ़ ली, हो गया कार्य। तिगंत में भी सामान्य प्रयोग कर लेते हैं, गच्छति पच्छति आदि। और उसके बाद में कदाचित कृदंते पाक है पाकौ पाक, कभी कभी करियो करते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए ध्यान पर रखना पड़ेगा कौन से कारक में है इसको याद रखना नहीं पड़ता, रामे रामो पता ही है कि कर्तृ कारक में। तो ये अवस्था हो गई है किसी पंडित की, अपनी पीड़ा किसी ने व्यक्त की है, तो ये स्थिति हो गई है। इसलिए ब्रह्मा जाते जाते क्रियाम पश्यति, आज जो ब्रह्मा है वो जाते जाते क्रियाम पश्यति, वो क्रिया को बस देखता है। क्या रहस्य है, ना ब्रह्मा को पता है, ना होता को पता है, ना यजमान को पता है, तो फिर होगा क्या, इनके रहस्य खुलेंगे कैसे, कैसे हम आधुनिक विज्ञान को टक्कर देंगे जब तक हम इनके रहस्य नहीं खोलेंगे। तो आज यजमान भी पश्यति, होता भी पश्यति, तो पश्यक है कश्यपो भवति, कश्यप है पश्यको भवति, निरुक्त कारण से हम कहा है कश्यप कौन है जो कश्यप है, कश्यप कौन है जो पश्यक है, बस देखते रहते हैं, चल रहा होगा कोई अंधेरा में बैठ बैठ। और आगे चलते हैं, तो ये सारे रहस्य जानने चाहिए, पढ़े क्यों, भूतों को दे ये पता नहीं पढ़ क्यों रहे हैं, क्रिया चल रही है, इसको पढ़ने से क्या मिलेगा, आप निश्चय कर लेंगे तो दुनिया की कोई इच्छा ही नहीं बचेगी कि आपको क्या मिल सकता है, शास्त्रों से आपको क्या मिल सकता है, अगर कोई दुनिया की इच्छा बचे, क्यों जी आईएएस कहता रहूंगा मैं जब तक आप आईएएस का चक्कर नहीं छोड़ोगे। ब्रह्मा एको जाते जाते विद्या वदति, एक जो ब्रह्मा है वो उत्पन्न उत्पन्न क्रिया के रहस्य को बताता है, किंतु ब्रह्मा एक है जाते जाते क्रिया पश्यति इदानीम। ब्रह्मा कस्मात, ब्रह्मा को ब्रह्मा क्यों कहा गया है, सर्व विद्या सर्वम वेदितुम अर्हति, सर्वा विद्या यस्य, जिसके पास सारी विद्या है। विद्या सारी कितनी है, 14 विद्याएं, कौन कौन सी, ये भी बिना गोपत के पता नहीं लगता, गोपत ब्राह्मण में बताया हुआ है, 6 अंग, 4 वेद, कितने हो गए 10, और 4 उपवेद, कितनी होगी 14। वस्तुतः ऋषियों ने दर्शनों को विद्या में नहीं माना है, षडंगो वेदोध्याय की बात आती है, नहीं महर्षि दयानंद ने माना है, प्राचीन जो 14 विद्याएं हैं उनमें दर्शनों की गणना गोपत ब्राह्मण में, जहां भी आती है षडंग वेद ही आता है, उपांग वाला नहीं आता। हाँ अब तो मानना ही चाहिए, महर्षि दयानंद ने घटाया तो हमें तो मानना ही है, तो 20 विद्या होगी, 20 विद्या होगी, प्राचीन वाले इनको उसमें नहीं गणना करते हैं, क्योंकि इसका वेद से सीधा संबंध भी नहीं है उपांग का, इसके बिना भी वेद आराम से समझ में आते हैं। ब्रह्म सर्वविद्या सर्वम वेद तुम्हारति, सारा और सब कुछ जानने का उसके अंदर सामर्थ है। तो ऐसा ब्रह्मा आप बनना चाहेंगे जी या पश्चक हो बनना चाहिए, वेद की आज्ञा नहीं बनोगे तो फिर सामान्य जीवन, सामान्य मृत्यु, 2-4 पीढ़ी में समाप्त, अगला जन्म भी सामान्य, फिर चक्र चलेगा। ब्रह्मा परिवृढ़ श्रुतत, परित वृढ़ वर्धित श्रुतत, वेदों को पढ़ के वो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वेद को पढ़ने से वृद्धि होती है। ब्रह्मा परिवृढ़म सर्वत, सभी से बढ़ा हुआ है, जितने भी और ऋत्विक हैं, जितने भी और ब्राह्मण वर्ग है, सबसे बढ़ा हुआ कौन है, क्योंकि वो तो एक वेद के विद्वान हो सकते चारों का है। यज्ञस्य मात्राम विमिमिते एको अध्वर्यु, एक अध्वर्यु यज्ञस्य मात्राम विमिते विशेषण मिमिते परिमापम करोति, का क्रिया कथा कथम च कर्तव्यम, वो कौन करता है निश्चय, अध्वर्यु करता है। अध्वर्यु कस्मात, अध्वर्यु को अध्वर्यु क्यों कहते हैं जी? नाना प्रकार का मात्रा, मात्रा माने परिमापम, ऐसा क्रिया कथम आचमनम कथम कर्तव्यम कियत च, तीन बार करेंगे आचमन, उसके बाद में कितनी आहुति देनी है, किंत हविंसी क्या हवि होगी, कैसे बोलना है, वो उसकी माप परिमाप को यज्ञों के अलग अलग हैं, तो सबको अध्वर्य ही जानता है। और जानता तो ब्रह्मा भी है, पर कर्ता कौन है? अध्वर्य करता है। ब्रह्मा तो केवल एक बार ब्राह्मण ऐसे एक बार अनुमति लेगा, अनुमति दे ही तो ब्राह्मण से अनुमति लेगा, ओम कुरु, ब्राह्मण अपह प्रोक्षामि, हे ब्राह्मण मुझे अनुमति दो मैं जलों का प्रोक्षण करूंगा, ओम प्रोक्ष, उसका कार्य पूरा होगा, फिर वो अपने स्वतंत्र कार्य करता है। सोमयाग किसी को देखना हो तो हमारा निरुक्त का यहाँ पाठ पूरा हो जाएगा, मार्च में होते हैं, फरवरी तक हम यहाँ कर ही देंगे, क्योंकि देव प्रकाश जी को लेके जाना, उनका शतपथ चलेगा तो उसके बिना समझ में नहीं आएगा, तो हम जाएंगे। दक्षिण भारत में ही होते हैं प्राय, हाँ वैसे ये हैं ले चलेंगे, क्योंकि उसके बिना देखे शतपथ ब्राह्मण आदि आ गए, कुछ खुली नहीं सकते, निरुक्त भी नहीं खुलेगा, आप देख लेना। अगर ये मैं घटना नहीं बताता आपको, मेरे को पता ही नहीं होता तो मैं इसको पढ़ा के क्या चलता, सीधा कह देते भाई ब्रह्मा जैसे आर्य समाज के चार ये हो गए ऋत्विक, चलो आगे, वो क्या घटना हो रही है, कौन सा वहाँ रहता है, क्या करता है, ये बिना ब्राह्मण ग्रंथों के नहीं आता। इसलिए महर्षि दयानंद ने लिखा है कि ब्राह्मण सहित वेद पढ़े, उसके बिना वेद समझ में नहीं आता। अध्वर्यु कस्मात, अध्वर्यु कस्मात, अध्वर्यु अस्य शब्दस्य को अर्थ, अध्वर्यु अध्वर्यु अध्वर और यु, अध्वर्यु अध्वरम युनक्ति थी अध्वर्यु, यज्ञ को जो जोड़ने वाला है। अध्वरस्य नेता, अध्वरम नियते या नैतीय से नेता, हमारे भी देश के नेता हैं। राष्ट्रम नैतीति राष्ट्र नेता, परिवारम नैतीति परिवार नेता, संस्थाम नैतीति और भ्रष्टाचारम नैतीति भ्रष्टाचारी नेता है जी, क्योंकि सारी क्रिया की जिम्मेवारी इसी की है। अगर इसको सारा याद नहीं होगा, बीच बीच में भूल जाएगा, तो यज्ञ नहीं कर पाएगा। ये तो अभी तो हमारा यहाँ तो अपेक्षा भी नहीं अग्निहोत्र में, जब आप सोमयाग देखेंगे कई हजार क्रियाएं होती हैं, वो सारा इसी की जिम्मेवारी होती है। हाँ तो यही जोड़ता है, इसके बाद कौन सी घटना, इसके बाद कौन सी घटना, और वो घटना अंतरिक्ष में भी हो रही है, इसके बाद कौन सी घटना, इसके बाद कौन सी घटना, वो सारा यही जान रखता है, तो यही जोड़ता है परस्परम। इसलिए वहाँ हर कोई अध्वर्यु सोमयाग में नहीं बन सकता, जिसको इतना सारा याद हो, वहाँ कोई पुस्तक लेके हमारे की तरह मंत्र पाठ थोड़ी करते हैं, वहाँ तो सारा याद होता है, हाँ वो तो वैसे याद है, पूरा ऋग्वेद याद होगा वही होता बनेगा, नहीं तो पुस्तक लेके बाजते रहेगा खोलता रहे इतने तो घटना कितनी हो जाएंगी। तो इसलिए तीव्र गति से उच्च स्वर से उदात्त बोलते हैं, अनुदात्त और वो तो स्वरित तो भूले ही हुए। नैति इति नेता, जो ले जाने वाला है, तो यज्ञ को आगे ले जाने वाला है, इस घटना के इस क्रिया के बाद ये क्रिया, इस क्रिया के बाद ये क्रिया, इस क्रिया के बाद, इसलिए वो नेता है, मतलब मुख्य है, उसके बिना यज्ञ नहीं हो सकता। हाँ निर्देशक तो वैसे ब्रह्मा है, किंतु ब्रह्मा तो आजकल किसी को भी पकड़ के बैठा दो, केवल उससे अनुमति इतना ही कहना, उसको दो चार शब्द याद करा दो कि ओम प्रोक्ष, बच्चा भी बन जाता है, किंतु क्रिया जिसको याद होंगी, मंत्र जिसको याद होंगे, वही अध्वर्यु, क्योंकि सबसे ज्यादा काम यही करता है, प्रारंभ से लेके अंत तक इसी का काम है। होता का काम तो केवल जैसे बताइए काम करता है, होता तो जब आहुति दान का काल होगा तब होता का काल है, बाकी तो आराम से बैठा रहेगा बेचारा, वही बेचारा आरंभ से लेके संकल्प से लेके पूर्ण आहुति तक वही सबसे ज्यादा काम करता, इसलिए वो नेता है। अध्वरम कामयते इति, वो यज्ञ की कामना करता रहता कि भाई यज्ञ होता रहे तो मैं होता हूँ अध्वर्यु हूँ, नहीं तो मैं किस काम का हूँ, भाई वेद पढ़े तो ब्रह्मचारी है, सीधी बात है। घटना किस बात को कह रही है कि वेद को पढ़ने के लिए जिसका संकल्प है, ये नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ घूम रहा है, शास्त्र की दृष्टि से वो नहीं है, सांगोपांग वेद का देता ही वो है, चाहे वो गृहस्थी भी हो, क्योंकि ब्रह्मणी चरितुम वर्तम यस्य, घटना किस बात को कह रही है, शब्द किस घटना को कह रहा है कि जिसको वेद को पढ़ने का जिसका संकल्प है वो ब्रह्मचारी है, जो ऐसा घटना घटाता है उस पर बात घट जाएगी, वीर्य रक्षत है ही, उसमें तो कोई संदेह है नहीं। हाँ ऋग्वेद का होता है, सामवेद का उद्गाता है, ब्रह्मा हो गया ना चारों वेद वाला, मतलब मुख्य अथर्वेद तो उसका हो, अथर्वेद तो बाद में पढ़ते हैं, पहले तीन हो चुके हैं, जो उसको पढ़ेगा वही बनेगा। तीन तो वो भी पढ़ा हुआ है, घटना वहां भी घट रही है। अपिवा अध्याने यु उपबंध है, अपिवा अध्वरम अध्येती अध्वर्यु, जो यज्ञ के विषय में पढ़ता है पढ़ाता है वो भी क्या है अध्वर्यु, तो यु उपबंध कर दो। यूप नहीं है जी, यू विसर्ग है, उपबंध है फिर। अचम दृष्ट्वा अधोयाति हलस्य उपरी गच्छति पदांते विसर्जनीय रेफस्य त्रिधा गति, तो पदांत में है तो त्रिधा गति होगी, मतलब रेप नीचे लटक गया ऊपर नहीं लटका, अगर अच परे नहीं होता तो ऊपर लटक जाता, इतना ही तो अंतर है, वो क्या अंतर है। तो नहीं, यू उपबंध है, यू रूपबंध है, तो यू को उपबंध कर लो, अर्थात यू को क्या क्या छंद सी, इससे क्या हो गया ऊ हो गया, क्या छंद से ऊ हो गया ना, क्या छंद से हो गया ऊ, तो ऊ उपबंध हो गया, यकार को ऊ हो गया तो अध्वर्यु बन गया। अध्वरयति यज्ञनाम धरती हिंसा कर्म तत्प्रतिषेध, धरती हिंसक ध्री हिंसायाम ध्वरंती अस्मिन इति ध्वर और अविद्यमान ध्वरात्रिति अध्वर, तो यज्ञ में हिंसा नहीं होती, ये ध्यान देने की बात है, यज्ञ में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती, इसलिए यज्ञ क्या करता है हिंसा का नाश करता है, इसलिए आपस में मतभेद हो तो यज्ञ करके दूर करें। निपात इति एके, एक आचार्य के मत में त्व जो है वो निपात भी है,
हिंसा
होती है। हाँ, वैर भाव भी हिंसा में आता है, सात त्रिधा भवती मानसिकी वाचिकी शारीरिकी, अगर मन में भी वैर भाव आ गया तो मतलब हिंसा है, हिंसा किसकी कर रहे हैं, वैसे दुनिया में कोई किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, सबसे पहले अपना, क्योंकि मन में आप क्या है तो आपकी स्मृति कम होगी, बुद्धि कम होगी, पित्त के रोग बढ़ेंगे और धीरे धीरे विनाश हो जाएंगे, पहले अपना हुआ है?
अपना
दूसरे का तो बिगाड़ते ही है, पहले तो सबसे पहले तो अपना बिगड़ता है, लंबे काल तक ईर्ष्या रखी बाद में विनाश तो बाद में होगा, तो किसका विनाश कर रही है, सामने वाले को तो पता भी नहीं मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, बिगड़ किसका रहा, अपना। नियम है परमाणुओं का, इसको आप विज्ञान में लिया करो हर बात को, यहाँ कोई धर्म की धर्म नाम है धारणा धर्म इतिहा, धारण किसने किया हो में परमाणु ने किया हुआ, सब कुछ परमाणु हमसे करा रहे हैं, सब कुछ पदार्थ हमसे करा रहे हैं, पदार्थों का ही कर रहे हैं हम, पदार्थों के लिए ही कर रहे हैं और पदार्थों से ही कर रहे हैं, आपने ईर्ष्या की तो कैसे परमाणु हो गए आपके ईर्ष्यालु, और आपके परमाणु ईर्ष्यालु हुए वायुमंडल में, जहां जहां आपके वो परमाणु पहुंच रहे हो वायुमंडल में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, जो कमजोर लोग हैं आपकी तरह वो मित्र बनते चले जाएंगे, तो फिर ऐसे परमाणुओं का संगठन बन जाता है, यही मनुष्यों का संगठन है, बड़ा रहस्य है। जिस दिन आप शतपथ ब्राह्मण पढ़ लेंगे आपको हर चीज भौतिकी के नियमों में दिखेगी, शतपथ ब्राह्मण यानी भौतिकी के नियमों को जानने का एक सर्वश्रेष्ठतम साधन, फिजिक्स क्यों बोले हम, फिजिक्स क्या क्या, भौतिकी का अर्थ निकाल सकते हैं, फिजिक्स का अर्थ बताना क्या है, फिजिक्स का समात बताओ बताना पड़ेगा ना, आपने फिजिक्स शब्द लिया तो फिजिक्स का समात, हम तो भौतिकी बताएंगे, भूतेभ्य इदम भौतिक है, जो भूतों की बात कर रहा है परमाणुओं की बात कर रहा है वो भौतिक है, आप फिजिक्स बताओ, फिजिक्स का समात, अब आपको ये भी नहीं पता फिजिक्स क्या है तो फिर आप फिजिक्स की चर्चा क्यों कर रहे हो, आपको नहीं, आपके वैज्ञानिक को भी नहीं पता जिसने फिजिक्स नाम रखा, अग्नि के द्वारा आप फायर से अग्नि को नहीं समझा सकते, इसलिए फिजिक्स मत कहो भौतिकी कहो। आगे चलते हैं, दृष्ट निपात इति एके, एकस्य आचार्यस्य मते निपातो भवति एषत्व, तो क्यों निपात है वो बता रहे हैं, दृष्ट अव्ययम तु भवति दृष्टेण एव व्ययम परिवर्तनम यत्र सदृष्टव्ययम, अर्थात जैसा देखे कहीं आपको निपात लगे, स्वर मिले और निपात का अर्थ भी मिले तो क्या मान लो आप, निपात मान लो दृष्टव्ययम, वेद में क्या होता है दृष्टा अनुविधय छंदसी भवन्ति केन उक्तम महाभाष्यकारेण, तो बिना महाभाष्य के भी बहुत सी चीजें समझ में, इसलिए पूज्य आचार्य बलदेव जी कहा करते हैं कि भाई महाभाष्य पढ़ के ना बुद्धि ऐसे देखती है, पहले तो ऐसे देखती है और फिर बुद्धि कैसे देखती है, और निरुक्त के बाद बुद्धि कैसे देखेगी, ऐसे देखेंगे, वेद पढ़ के तो बुद्धि समझेगी चीजों को, देख तो आप ब्राह्मण तक चुके होंगे, उसके बाद तो उनके अंदर तक जाके पदार्थों का साक्षात्कार होगा वेद से, तो उसके ब्राह्मण तक आपकी बुद्धि चारों तरफ को विस्तार हो जाएगी। अब वहां आप पता लग जाएगा कि अग्नि क्या है, तो ये तो सारा पता लग गया आपको, व्याकरण से भी पता लग गया, निरुक्त से भी लग गया, 100 अग्नि के विभाग पता लग गए, किंतु अंदर बैठ के देखना पड़ेगा ना उनमें, तो अंदर बैठ के देखने का सामर्थ्य वेद देगा, क्योंकि मंत्र है पवित्रम, और पवित्रता जहां आएगी वहां अपवित्रता नष्ट हो जाएगी, और जब अपवित्रता नष्ट हो जाएगी तो सत्य का विकास हो जाएगा, और सत्य शुद्ध ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम, अब कोई वृत्ति तो बची नहीं, काम करो दीर्षा वीर्षा सब समाप्त है, तो देखेगा क्या मन, रजसी नहीं बचा, तमस नहीं बचा, बचा क्या सत्य बचा, सत्य तो साक्षात्कार कराने वाले पदार्थ का नाम हो। हाँ वाह, और आगे चलते हैं, उतत्व सख्ये स्थिर पीता माहु इति द्वितीयम, ये सर्वनाम है, अनुदात है, द्वितीय विभक्ति में वेद में कहाँ प्रयोग किया है वो बता रहे, मंत्र निकाल लीजिए, घटना क्या हो रही है वहां देख लेते हैं, 10:71:5 ऋग्वेद 10वां मंडल 71 सूक्त 5वां मंत्र है भाई, पहले मैं देख लो, ये इसका इस सूक्त का देवता ही जान है, महाभाष्य में भी इसके मंत्र हैं, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति कैसे चीजों को देखता है, हाँ, और बृहस्पति कौन है महाभाष्यकार के अनुसार, निरुक्त में आनंद आ रहा है या ऐसा तो नहीं लग रहा, या घटनाएं कम सुनो पाठ खींचो क्या करना है, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, कहीं कहीं घटना आती है वहीं करेंगे, बाकी तो पाठ तो खींचना ही है, ये घटना बतानी जरूरी है ना, नहीं आप जानवान कैसे होंगे, छह सौ 77 में तो नहीं है मेरे यहाँ 87। हाँ अब देखिए कितना सुंदरतम सूक्त है ये, कि बृहस्पति आंगिरस है तो इसका सभी का दे ऋषि है, ऋषि बृहस्पति है, और बृहस्पति कौन है, बृहताम पति, जितने बड़े बड़े आचार्य हैं उनका जो सबका गुरु बृहस्पति, वही देवा नाम गुरु, देवताओं का भी जो गुरु है वो बृहस्पति है, जो विद्या में खूब बढ़ा हुआ है, और वो बृहस्पति कैसे बढ़ा है ये घटना है, उसका नाम है ज्ञान, बृहस्पति किस में बढ़ा हुआ है, ज्ञान में बढ़ा हुआ है, अगर आपको भी बृहस्पति बनना है तो किससे बढ़ेंगे आप, तो ज्ञान देवता हो गया, ऋषि देवता, कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या है, आगे चलते हैं। मंत्र देखें, उतत्वम सख्ये स्थिर पीतम आहु नैनम हिनवंती अपि वाजिनेषु अधेनवा चरति मायया एष वाचम सुश्रुवान अफलम अफलाम अपुष्पाम, जो वेदवाणी को फूल और पुष्प से नहीं जानता वो कैसा है, अधेनवा, अधेनवा नाम है धेनु, दधाती धारियती पोषयती यासा धेनु, ऐसी गायें जो दूध देती है, बछड़ा भी जिसके पास है पुष्टि भी कर रही है, उसका नाम गाय का धेनु है, और गायें यदि बांझ है दूध नहीं देती, उसका प्रयोग तो बहुत है, प्रयोग कैसे, गोमूत्र भी काम में आता है, गोबर भी काम में आता है, सब कुछ काम में आता है, किंतु वो धेनु के समान है क्या, नहीं, तो जो व्यक्ति मंत्र तो पढ़ता है, मंत्र पढ़ने से भी लाभ है, किंतु वो ऐसा है जैसे बंध्या गऊ है, तो ऐसा समझ लो कि दूध नहीं दे रही, अगर किसी को समस्या होती है, वैसे व्याकरण में आया भी है, तो क्या होगा, कोई ज्यादा प्रयोजन उसके लिए नहीं, ना तो घी दे सकती है, घी के बिना हवन नहीं होगा, दूध की भी आहुति होती है वो भी नहीं होगा, गोबर का गोमूत्र का प्रयोग होगा जरूर, तो इतना ही प्रयोजन उस व्यक्ति का भी है जो अनर्थक वेद को पढ़ता है, अर्थ नहीं जानता, मंत्र पाठ करता रहता है, उसी को ये कह रहे हैं। तो उतत्तम सख्य, सख्य नाम है समान ख्यानेशु, सख्य नाम है समानम ख्यानम, ये हो तब सख्यम, जिनका एक विचार है, एक सभा है, एक सारी चीजें हैं, तो उतो तुम उनमें उनको सख्य स्थिर पीतम आहू, तो सख्य मित्रता में स्थिर पीतम आहा कहा जाता है, स्थिर रूपेण जो पीतम है जिन्होंने पान किया हुआ है। कौन है वो जो स्थिर रहते हैं मित्रता में, जब दोनों मित्रता तो वैसे प्राय बराबर वालों में ही होती है, तो जब दोनों मित्रता बराबर कहां हुई, जब दोनों वेद के विद्वान होंगे, पर आजकल थोड़ा उल्टा हो रहा है, मित्रता नहीं होती प्रतिस्पर्धा हो जाती है, होनी मित्रता चाहिए। न एनम हिन्वंती अपि वाजिनेषु, न एनम एनम केनम यह वेदम येन अधीतम, न हिन्वंती हिन्वंती नाम है उसको कोई रोक नहीं सकता हटा नहीं सकता, वाजिनेषु नाम है संग्रामेषु, संग्राम में उसको कोई, संग्राम किसका होता है, जब पंडितों का संग्राम होता है तो देखा है कैसा होता है, शास्त्रार्थेषु गोष्ठीषु सभासु, याज्ञवल्क की और राजा जनक की और गार्गी की एक सभा हुई थी, और सर्ववेद पारिषदम ही इदम शास्त्रम, किसके लिए लिखा हुआ है, पाणिनि की अष्टाध्यायी के लिए, किसने लिखा हुआ है, महाभाष्यकार ने लिखा हुआ है, सर्ववेद पारिषदम ही इदम शास्त्रम, सर्वेषु वेद परिषदसु यह प्रमाणीकृतम तद अष्टाध्यायी नाम शास्त्र, व्याकरण शास्त्र। तो पहले कोई भी ग्रंथ लिखे तो नियम क्या होता था राजा का, कि वो उसको पहले ऋषियों की सभा में भेजेगा, राजा खुद बैठेगा, ऋषि लोग प्रमाणित करेंगे तो छपेगा। ये समाज के काम का है, केवल पेड़ कटवाने के काम का है, देखना पड़ेगा ना, क्योंकि एक पुस्तक को छापने के लिए बहुत पेड़ कटते हैं, अगर वो पुस्तक समाज के काम की होगी तो छपेगी, नहीं होगी तो पंडित के पास में हस्तलेख के रूप में रखी रहेगी, उसको पढ़ना पढ़ाना नहीं हो सकता, ये नियम था। और आज नियम क्या है, जिसको चाहो वही पुस्तक लिख लो, उसका कोई पहले से 500 पुस्तक उस विषय में हो, कोई नया दर्शन ना हो, तो क्या हो जाता है, पुस्तक की भी महत्ता नहीं बचती और पेड़ अलग से कटते हैं ना। तो वही है, न एनम हिन्वंती वाजिनेषु, वाजिन नाम संस्कारों में, संग्राम में, संग्राम में इसको कोई नहीं हटा सकता, चाहे युद्ध का संग्राम हो, और सेनापति कैसा होना चाहिए, सेनापत्यम च राज्यम च वेद शास्त्रविद अर्हति, वेद शास्त्र को जाने वाला ही सेनापति होना चाहिए, और राजा भी वैसा होना चाहिए, तो वैसे युद्ध में भी इसको कोई नहीं हरा सकता। और अधेन वायु चरती माया, ऐसा माया मतलब छली कपट रूप से, माया से चरता है, खूब अपने कपड़े तो बढ़िया आचार्य वाचार्य की तरह पहने हुए हैं और सारा वो किया हुआ है, किंतु सभा में गए तो निरुत्तर हैं, तो बदनामी करा दी, वही कह रहे, तो ये माया से चरता है, लगता तो है कि भाई देखने में तो बढ़िया कपड़े बड़े पंडित की तरह लगता है, किंतु वो छदम वेशी है, कपड़े तो अच्छे पहनने चाहिए किंतु विद्या भी वैसी आनी चाहिए। वाचम सुश्रुवान, केवल इसने वाणी को सुना है, वेद वाणी को सुना, वेद मंत्र तो पूरे याद है, किंतु अफलम अफलाम अपुष्पाम, न उसमें फल है ना, और वाणी का पुष्प और फल क्या है, मैंने बताया था पहले, याज्ञ देवते पुष्प फले देवता आध्यात्मेवा, यदि देवता का ज्ञान हो गया है और उस देवता के ज्ञान से देवता कहाँ रहता है, अध्यात्म का ज्ञान होता है, तभी वाणी क्या है, पुष्पति और फलवती, अन्यथा अधेन वायु चरती माया। लगभग सारे उनका धन्यवाद है जो वेदों की रक्षा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पर वो लगभग ऐसे ही हैं जैसे यहाँ बताया हुआ, ये मंत्री बता रहे, हम नहीं बता रहे, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। तो आगे चलें, इसी का अगला ही मंत्र है, इसी सूक्त का, अक्षणवंत अथापि उतो तस्मै तन्व विशेषरे इति चतुर्थ्याम, चतुर्थी में इसका प्रयोग किया है त्वय शब्द का, अर्थात ये क्या है, त्वय शब्द निपात नहीं है, ये क्या है, नाम है, सर्वनाम है। तो उतो तस्मै तन्व विशेषरे इति चतुर्थ्याम, इस मंत्र की अस्य मंत्रस्य व्याख्या है तो अपेक्षा न वर्तते, सर्वे अधीति महाभाष्य नव अधीति महाभाष्य सप्तमी कथम अभूत, अधीति महाभाष्य महाभाष्यम अधीति होना चाहिए, सप्तमी कथम अभूत अधीति महाभाष्य विचारियंत, महाभाष्य को पढ़े हुए अधीति महाभाष्य महाभाष्यम अधीतवंत होना चाहिए, तो अधीति महाभाष्य कैसे हो गया, ये विशिष्ट प्रयोग है व्याकरण का, विचार करना नहीं तो फिर बता देंगे, कुछ ऐसे विशिष्ट प्रयोग भी व्याकरण के आने चाहिए। उतो तस्मै तन्वम विशस्रे इति चतुर्थ्याम, ये मंत्र है, बोल देता हूँ और एक तो वेदवाणी को अपना होगा अग्नि मीड़े पुरोहितम, क्या अग्नि है, क्या पुरोहित है, क्या ऋतु, हमें तो पाठ करना यज्ञ करना हो गया कार्य। एक व्यक्ति कैसे सोचता है जो ज्ञानी व्यक्ति है, अग्नि पुरोहित कैसे है, ऋतु कैसे, वेद ने कहा कहाँ मिलती है, कौन सी अग्नि की बात की है, ये अग्नि मेरे अध्यात्म का कैसे विकास कर सकती है, ये अग्नि मेरे अधिदेव विज्ञान का कैसे विकास करती है, ये अग्नि समाज का कैसे विकास कर सकती है, संगठन का कैसे, जो ऐसा विचारता है वो कौन है, तन्वम विशस्रे। उसी के लिए वेद मंत्र अपने स्वरूप को खोलता है। दूसरा व्यक्ति तो केवल श्रोता मात्र होता है या वक्ता होता है अनर्थक का। और आगे चलते हैं, अथापि प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन में भी है अक्षणवंत कणवंत सकाय मनोजवेशु अस्मा बभुवु आदघ्नाश उपकक्षाश है उत्वे, अलग अलग करो, उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददृशे। ये भी इसी ऋग्वेद का मंत्र निकाल लो, वही उसी में है ये इसका अर्थ ही जाना में जान देवता और बृहस्पति इसका आचार्य देवता का। तो ज्ञानवान व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, ज्ञान से क्या क्या उपलब्धि होती है जीवन में, और उसका विपरीत ले लो अज्ञान से क्या क्या हानि होती है, सबको पता ही है, उस पर चर्चा की रोज हो रही है। अक्षणवंत है आंख वाले, कणवंत है कान वाले, सखाय समानम ख्यानमेशाम ऐसे जो मित्र हैं, मनोजवेशु मनोजवेशु मन स जव मनोजव तेसु मनोजवेशु मन के वेग में, मन का वेग क्या होता है, यस्मिन च साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रतना भव यारा, तो ये मन का वेग है कि जब चाहे जिस विषय को चाहे जहां से चाहे वहां से निकाल के प्रस्तुत करके अपना भी समाधान कर ले दूसरों का भी कर ले, ये है मन का वेग। जीव गतौ मन से जव गति प्राप्ति ज्ञानम इति मनोजव तेसु मनोजवेशु असमा बभू, समा बराबर वाले और असमा समान रूपेण न बभू, किसी का ज्यादा है किसी का, ये किस आधार पे है, ज्ञान के आधार पे है। आदघ्नाशा कैसे है ये आदघ्नाशा, आस्य दघ्नाशा आदघ्नाता, कुछ तो मुख तक डूबे हुए है ना, कुछ उपकक्षा से कुछ कंधे तक से नीचे तक डूबे हुए हैं, उत्वे एकेतु हृदय स्नात्व, तालाब में जैसे कूद के निकल गए हो, जैसे जल्दी से जल्दी कुछ पढ़ लिया उतर के मैदान में, उत्ते दृश्यते कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं, इसलिए भाष्यकार को भी लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा, ये तो आप और हमारे लिए है, दूसरों के लिए क्या लिखा हुआ उन्होंने जो उस काल में हो रहा था, वेदान्नो वैदिकः शब्दः सिद्धः लोकाच्च लौकिका अनर्थकम् व्याकरणम् तेभ्य एव विप्रतिपन बुद्धिभ्य अध्येत्री जयस सुहृद भूत्वा आचार्य इदं शास्त्रम् अनुवाचष्टे। तो वो कौन थे, वेदान्नो वैदिकः शब्दः सिद्धः, हमने वेद याद करे हुए हैं इसलिए तो हमें वैदिक शब्द याद है, और लोकाच्च लोक में हम संस्कृत भाषा ही हमारी मातृभाषा, तो वो तो अनर्थकम, तो ऐसे जो लोग हैं जो जल्दी करने वाले हैं वो क्या करते थे, वेदम अधित्य त्वरितो, वेद को पढ़ के त्वरित वक्ता भी समाज चाह रहा है जल्दी निकलो जल्दी निकलो, समाज तो चाहता रहेगा वर्षों से चाह रहा है, उनकी इच्छा तो आज तक पूरी नहीं हुई भविष्य में भी रहेगी, घर वाले चाह रहे हैं घर वालों की इच्छा किस किस की पूरी करोगे, क्यों जी अभिषेक जी, तो घर वाले चाह रहे हैं कि हाँ ये घर में काम करे ये करे मजदूर बन करे, वो नहीं करना, घर वाले हैं उन्होंने जन्म दे दिया उनकी मानो जरूर पर ऋषियों के अनुसार मानो, बाकी उनकी बातें माननी नहीं क्यों हमें अपने जैसा बना देंगे, इनकी क्यों मानेंगे, हम तो ऋषियों की और वेद की बात मानेंगे, परिवार वालों की क्यों माने, परिवार की बात उनके अनुकूल हो तो मानो नहीं तो मत मानो, तो वही कह रहे हैं कि नहीं तो फिर क्या होगा त्वरिता वक्ता हो जाएंगे, त्वरित वक्ता होने पे क्या होगा, ना इधर के बचेंगे ना इधर के बचेंगे, ना तो बेचारों को वेद समझ में आया ना व्याकरण आया, अब समाज भी चाहता है कि कुछ और बताओ वो भी समझ में, तो इधर से भगेंगे फिर कोई बुलाना भी छोड़ देगा, ऐसे ही होता है कुछ दिनों में, तो फिर करें तो क्या करें, फिर लौट के इसी मार्ग में आना पड़ेगा, इससे अच्छा कि पहले ही पढ़ लो। तो ऐसे ही है यहाँ, तो यहाँ बहुवचन में इन्होंने बता दिया कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे हैं, तो आप मनोजवे वाले बने। अक्षी अक्षी मंत है, कर्ण मंत है, सखाए आंखों वाले और कान वाले। आंखों से तो देखता है वेद के मंत्रों को, और कानों से, और संबंध किससे जुड़ता है, याम में धाम। अक्षी चष्टे चक्षु दर्शन है, जिससे दिखाई देता है। एक अंदर की भी आंखें हैं, कभी आपने देखा हो तो, उन पे कम ध्यान जाता है। दुनिया के लिए हम जीते हैं, अपने लिए, दुनिया के लिए कैसे जीते हैं, बाहर वाला क्या सोचेगा, अरे अंदर वाला देवता बैठ के क्या सोच रहा है, थोड़ा उसका भी सोच लो। ऐसा होता है ना कि बाहर वाला क्या सोचेगा, उस पर तो ध्यान रखते हैं, ये अंदर वाला क्या सोचेगा। हम किसी के घर गए भाई, वो क्या सोचेगा उसकी चाय नहीं पी तो, वो क्या सोचेगा उसका शरबत नहीं पिया तो। ऐसे हमारे साथ तो, क्योंकि मैं तो कुछ पीता हूँ खाता नहीं, वैसा तो घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं लगा हमें, भाई आपको अच्छा नहीं लगा, मेरे देवताओं का अच्छा लग रहा है, हमें अंदर वालों को दिन रहा। आप तो खुद अज्ञानी, हमें भी अज्ञानी बनाना चाह रहे हैं। बाहर वालों को नहीं देखना, अंदर वालों को देखना, ऋषियों को देखना। अनक्ते इति आग्रायण, आग्रायण आचार्य ने कहा कि अनक्ति से बनाए, क्योंकि इसमें थोड़ा द्रव्य भरा होता है, आंखों में द्रव्य भरा होता है ना, उसी के कारण तो देख रहे हैं, इसलिए इससे बने। अंजीव व्यक्ति वृक्षणयो, उससे बनी है, इसलिए आग्रहण ऋषि ने कहा। तस्मा देते व्यक्त तरय बहुत है, ये दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है, जो भी चीज चमक रही है उसमें आपे तत्व है। ये ध्यान देने की बात है, वेद की आज्ञा है, जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं उनमें आपे तत्व है, आपे तत्व है, आपे तत्व के कारण ही ये सारा है। अग्नि से तो चीजें पकती हैं, अग्नि तो चीजों को पकाती है, दिखाने का कार्य आपे तत्व का, आग्नेय तो उसमें संबंध है, मुख्य तत्व आपे है। वो आपे बढ़ जाए तो भी कम दिखाई देता है, आपे बढ़ गया तो आंखों के ऊपर परत आ गई, परत आ गई तो प्रकाश कम हो गया, जैसे लैंटर्न के ऊपर कालस आ गई, और यदि कम हो जाए तो द्रव्य नहीं बचा दिखाने वाला, तो भी इसलिए समान रहना चाहिए। इस उपाय तो जब आयुर्वेद पढ़ोगे तो पढ़ेंगे, और आगे चलते हैं। रिच्छते इति अग्रायण है, और आग्रायण अच्छा, तस्मा देते व्यक्तरित होगा ना, इति है विज्ञायते, इति है विज्ञायते नाम है, ये इसका विज्ञान है, और विज्ञायते मतलब ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है, जहां भी विज्ञायते आदि आए, इति विज्ञानम आए, तो मतलब विज्ञान का अर्थ ब्राह्मण ग्रंथ है वेद की भाषा में, इनकी भाषा में। कर्ण है कृंतते निकृत द्वारो भवति, और कर्ण क्यों बना, कृति छेदने धातु से बना, जैसे किसी ने काट के लगा रखा हो, छेक दिखता है ना ऐसा, तो निकृत द्वार है, जिसका द्वार खुला हुआ है। जब नासिका मंत्र में आएगी तो तब बताएंगे, अभी तो नासिका नहीं है, अभी तो कान को समझो। रिच्छते इति अग्रहण, अग्रहण का है कि रिच्छते रिगत धातु से है, ज्ञान गमन प्राप्ति करण ही कराता है। अगर ये करण ना हो तो आपको कुछ सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो अज्ञान में जिएंगे। रिच्छन्ति हे खे उद्गंताम इति विज्ञायते, और ये अंतरिक्ष में ऐसे खड़े से होते हैं, ये इसका विज्ञान है। अंतरिक्ष में भी कान है, वो भी सुनता है, ये ध्यान देने की बात है। जो कुछ हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में भी है, वो कान कहाँ कहाँ रहते हैं ये थोड़ा विज्ञान है। हाँ, अंतरिक्ष में कान है,
हमारे सुनता है तो।
देखिए कंप्यूटर आपकी बात को सुनता है, नहीं सुनता? जब मनुष्य का बनवाया कंप्यूटर आपकी बात को सुन रहा है, उत्तर भी दे रहा है, रोबोट चल रहा है, तो आप परमात्मा वालों पे संदेह क्यों कर रहे हो?
नहीं, हमारे वाणी को सुनता है तो हमारे मन की
सुनता है। एक मन ब्रह्मांड में भी है, एक मन ब्रह्मांड, जो चीज हमारे अंदर हो ब्रह्मांड, हमारे अंदर एक मन है, एक मन ब्रह्मांड में भी, एक बुद्धि ब्रह्मांड में भी है, ये सब कुछ है। तो ब्रह्मांड के मन के द्वारा आप दूसरे मनों के बीच में पहुंच सकते हैं, जैसे स्काइपी के द्वारा हम हैदराबाद तक पहुंचे हुए हैं, उधर पुणे तक पहुंचे हुए, पहुंचे नहीं पहुंचे, यहाँ से आवाज जारी नहीं जारी, ऐसे ही ब्रह्मांड के मन के द्वारा अगर आपको अपना मन ब्रह्मांड से मन में जोड़ना आ जाए तो जिस मन में चाहेंगे आप जुड़ जाएंगे, यही विभूतिपाद है। मंत्रों में ये बात है, विभूति पात तो आप छोड़ो और आगे चलते हैं। मन साम प्रजवेशु अस्मा बभु, मन साम, मन क्या है, मन के प्रजवेशु, मन की गति में असमा बभु, समानम न बभु, वो मन की गति में समान नहीं है। विद्यार्थी भी प्राय समान नहीं होते, किंतु बन सकते हैं पुरुषार्थ से। अब जैसे आप 15 16 17 जितने भी हैं, तो इसमें क्या सबको समान समझ में आ रहा है? लगभग आ तो रहा है, कई लोग तो बराबर टक्कर में चल रहे हैं, है ना, तो कुछ को कम आ रहा है, आ तो सभी को रहा है, तो वही कह रहे हैं। ये क्यों है, इस पर विचार करो, उनके समान होना है तो उसके भी तरीके हैं। आस्य दघ्नास अपर उपकक्षा दघ्नास अपरे अपर आस्य दघ्नात है, कुछ तो मुख तक डूबे, समुद्र में कोई डूब रहा हो तो कोई मुख से डूब लेता है, कोई काक के पानी तक, अर्थात कहीं तो वेद को क्या समझे, समुद्र समझे, तो कोई जब पानी यहाँ तक आ गया तो कोई तो यहाँ तक डूबा, मतलब यहाँ तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कुछ ने यहीं से डर जाते हैं नदी में जाने से कि भाई इससे आगे हम नहीं जाएंगे, सामर्थ नहीं है, वैसे सामर्थ सबका होता है। और आश्यम अश्यते, आश्यम को आश्यम क्यों कहते हैं, अश्यते, इसमें अन्न फेंका जाता है, फेंका जाता नहीं फेंका जाता, मतलब वैसे तो अन्न को नहीं फेंकना चाहिए किंतु लोग फेंकते ही हैं, चबाते भी नहीं है, 5-7 मिनट में भोजन कर लिया तो कर फिर पेट में समस्याएं हैं, चबा के खाना चाहिए। वो भी है, उसको मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, हाँ अन्न भी तो मुख में ही फेंका जाता है, मुख ना हो तो खाओगे कैसे, अशुक्षेपणी धातु है, मैं क्या करूँ, धातु इस अर्थ को कह रही है, अर्थात फेंका जाने का अर्थ ये तो हिंदी में बता रहे, क्षेपणे का क्षिप प्रेरणे भी है, अर्थात जो अन्न को खाने के लिए प्रेरित करता है और जिसमें प्रेरित किया जाता है, तो अन्न को तो पूजा है, अन्न खाना भी एक पूजा है, जैसे यज्ञ एक पूजा है, अन्न खाना भी एक पूजा है, पर इसको भी नहीं जानते इसलिए फिर रोगी है। अस्यंदन्ते एनत अन्नमिति, इसमें अन्न को गीला भी किया जाता है, सिंधु प्रसरण धातु, अन्न जो है खाते गीला होता नहीं होता, आप तत्व भरा हुआ है, जीभ के नीचे है, जीभ में है, अगर वो जिसके न हो तो उसको अंदर ही नहीं जा सकता, बीच में अटक जाएगा, क्योंकि वायु को दबाने वाला, वायु को प्रेरित करने वाला आप तत्व, हमें भोजन नीचे कैसे जा रहा है नाली में, ये असंधता के कारण जा रहा है, आप तत्व के कारण, अगर ये सूख जाए तो नीचे नहीं जाएगा, चिपक जाएगा, ये भी ध्यान देने की बात है। और दघ्नम दध्यते सुरतिकर्मण, दघ्नम क्या, दध्यते जो डुबो लेती है, सुरतिकर्मण है, दस्यते वा स्याद वि दस्तरम भव, दस्ततरम भवती, वि दस्ततरम भवती, और दशु धातु से बना है, ते उपक्षीणम तरम भवती, लेने के बाद में उसको क्षीण बना देता है भोजन को, भोजन खाने के बाद भोजन वैसे ही रखा रहे तो क्या होगा, भोजन वैसे ही रखा रहे तो पचेगा नहीं, तो उसको क्षीण कर देता है, दशु उपक्षय, उसको पहले क्या बनाता है, रस बनाता है, रस के बाद रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और पोज, और जो फालतू चीजें हैं उनको निकाल देता है। प्रश्न या हृदय, हाँ जी, आप है तत्व, आश्चर्य दघ्न, दघ्न का किया, दघ्न को दघ्न क्यों कह रहे हैं, कि उसका अर्थ है कि दशु पक्ष है, कि वो चीजों को कमजोर कर देता है, कमजोर कैसे कर देता है, कि जब आपने भोजन खाया तो पहले तो इतना मोटा टुकड़ा था, उसके बाद में इतना सा बना दिया, फिर पेट में गया तो उसको और सूक्ष्म कर दिया, आगे बढ़ते बढ़ते वो होता रहा, मुख ने, यहां से जो गया है तो मुख ने किया है, पेट के अंदर किसने किया, आप तत्व ने किया, प्रश्न यह लिखा हुआ ना, सुनु प्रश्न, आप ही फैलाता है चीजों को, बिना आप के चीजें नहीं फैल सकते, अग्नि तो सुकोड़ता है, आप फैलाता है, अग्नि तो जो है ना सूख के व्यक्ति देखो ना कैसे हो जाता है, तो किसके कारण हुआ वो, हवन की वो अलग बात है, जो मैं सामान्य रश्मियों की बात कर रहा हूँ, वो तो अग्नि किसको फैलाती है, आप को ही फैलाती है, आप ना हो तो अग्नि कुछ नहीं कर सकती, घी क्या था, आप था, सामग्री क्या थी, आप तत्व वाली है, हाँ, और फैलाने वाला अग्नि, इसलिए आप का कोई केंद्र नहीं है, मतलब जो केंद्र होता है ना, एक मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र तो है पर वो सब जगह व्यापक भी है, कैसे व्यापक है, जहां जहां अग्नि से हम कोई भी चीज चलाएंगे वो बिना आप तत्व के जल ही नहीं सकती, इसमें भी आप है, इसमें भी आप है, मैं बोल रहा हूँ ये भी आप तत्व के कारण बोल रहा हूँ, मुख सूख जाता है आवाज ही नहीं आती, क्या कमी हो गई थी, अग्नि ने बोलते बोलते उसको जला दिया, इसलिए बीच में पानी पी लेना थोड़ी थोड़ा। प्रश्न या हृदय वेके, प्रश्न या ददृशे स्नान आ रहा, कुछ तो प्रश्न या हृदय, कुछ तो तालाब में डूब रहे हैं, इवेके प्रश्न या ददृशे, कुछ मतलब यही है, कुछ तो प्रश्न या तालाब में, कोई तो कंठ तक गए, कोई बगल तक गए, कोई पैरों तक गए, ऐसी ये निंदा भी है और स्तुति भी है। निंदा कैसे है, जिन्होंने पूरा पढ़ लिया है वो तो क्या हो गए, आस्य दघ्ना से हो गए, यहाँ तक चले गए, मुख में तो सारा यहाँ का सिस्टम आ गया पूरा, ऊपर का मतलब द्युलोक तक चले गए, बीच में जो यहाँ तक आए हैं वो अपना अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं, ना भी नहीं, इस पृथ्वी पे ही घूम रहे हैं, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो कहीं भी नहीं घूम रहे हैं, ये भी है फिर, वो वैसे व्यर्थ ही घूम रहे हैं, वो है ना व्यर्थ ही घूम रहे हैं पृथ्वी पे, ये पता नहीं क्या करने आए, कैसे जीना कैसे रहना कुछ जान ही नहीं है। तो अज्ञानी की हमेशा निंदा, अज्ञानी वो भी है जिसने सारे पढ़ने के बाद भी आचरण में नहीं अपनाया, ये भी, ये नहीं कि वेद पढ़ने से हो जाएगा, जीवन में भी उतारना है। वो महाज्ञानी है पढ़ने के बाद भी यदि नियमों का पालन नहीं करता। हृदो ह्रादते शब्द कर्मण, और ये ह्रद क्या है, शब्द कर्मण है, क्योंकि ह्रद अव्यक्त शब्द है, तालाब में नदी में समुद्र में अव्यक्त शब्द होता रहता है। ह्रादते वा स्यात् शीति भाव कर्ण, ठंडा भी होता है पानी, तो जब उसमें जाएंगे तो थोड़ा ठंडा भी करेगा शरीर को। अब ये देखो निर्वचन कहाँ से कैसे निकाल रखे, मंत्र में बात तो केवल उसकी आई थी किंतु उस शब्द का भी निर्वचन कर दिया जो बीच में आया, कहाँ कहाँ ये घटना हो रही है। ध्यानेन ध्यातव्यम ऐसा घटना कुत्र कुत्र वर्तते, यत्र यत्र वर्तते तत्र सर्वत्र निर्वचनम कर्तव्यम एतद् विज्ञानम। अथापि समुच्चय अर्थे भवति, समुच्चय अर्थे अपि एषा भवति, कः त्व पर्याय इव त्व तद् आश्विनम्, पर्याय इव तद् आश्विनम्, आश्विनम् पर्याय एव वर्तते, अर्थात आश्विनम् नाम अश्वनि देवतायाः देवतायै इदम् आश्विनम्, अश्वनि देवतायै इदम् आश्विनम्, अश्विनि देवते द्वे, द्वे देवते अश्विनी देवते, सूर्य चंद्रमसौ कुत्र ब्रह्मांडे शरीरे प्राण अपानौ भोजने व्रीहि यवौ इति अश्विने। अश्विनी कुमार है तो नाम है वर्तते ना, बाला नाम, नाम है कुमारो भवति इदानी, इदानी अपि सन्ति, इदानीमपि अश्विनी देवते स्तः कुत्र सन्ति तेषां समय का देवतकांडे अधिका चर्चा तो नशात पुनः पाठो न भूति देवतकांडे सर्वम आगच्छति के अश्विनौ। अस्तु तरी आश्विनम च पर्यायश्च इति उच्यते, तो समुच्चय वर्तते आश्विनम च और पर्यायश्च इति उच्यते। अश्विन अश्वी देवताओं का जो है वो आश्विनम है, और जो प्रकर्षेण गमनम है वो पर्याय है। परित असमंतात याति इति पर्याय, तो अश्विनी देवताओं से संबंधित कोई घटित क्रिया है जाना, जिसके द्वारा वो जाते हैं, तो अश्विनी देवताओं का रथ भी है जिससे वो चलते हैं अंतरिक्ष में, मंत्र में आता है। और अश्विनी देवताओं ने क्या किया था, च्यवनम युवानम चकार है, च्यवन ऋषि जो बूढ़ा हो गया था जर्जर हो गया था, उसको युवानम चकार है, मंत्र में चौरप्रास की बात नहीं आयुर्वेदिक मंत्र में, इनके सूक्त हैं आगे आएंगे इसमें भी आता है निरुक्त में भी आता है। तो ये कौन सी शक्तियां हैं जो बुढ़ापा नहीं आने देती, व्यक्ति को युवा बनाती है, प्रकृति को युवा बनाती है, टूट फूट को ठीक करती है, तो उन शक्तियों का नाम क्या है, इसलिए क्या करना चाहिए, जहाँ जहाँ ये शक्ति है वहाँ का सेवन करना। और ये रात को 2 बजे के बाद आती हैं और 5 बजे तक रहते हैं, इसलिए जल्दी उठ लेना चाहिए। प्रकृति से जो निर्मित पदार्थ है उन्हीं को बनाएगी, प्रकृति तो हमेशा युवा ही रहती है, जैसे आत्मा हमेशा युवा है, परमात्मा युवा है, प्रकृति भी है। ये क्या करते हैं ना, अब आपकी गाड़ी, किसी के पास गाड़ी है तो उसकी जो सर्विस करेंगे तो गाड़ी ठीक से चलेगी, आयुर्वेद में भी पंचकर्म करेंगे तो शरीर ठीक से चलेगा, 6 महीने में 2-4-5 साल में जब भी समय हो, तो हम वो नहीं करते, जिस घर में रहते हैं उसकी भी सफाई करते हैं, जहाँ जिस यान पे चलते हैं उसकी खूब धुलाई करते हैं, कपड़ों की भी खूब धुलाई करते हैं, अंदर की धुलाई नहीं करते, ना मन की करते और ना शरीर की, समस्या इसलिए। तो अश्विनी देवता ब्रह्मांड की धुलाई करते हैं, जो इसमें ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, विनश्यति जो हो रहा है, अपक्षीय तौर उसको ठीक रखते हैं लंबे काल तक, एक दिन तो इनकी भी सीमा है कि उसके बाद ये कर नहीं सकते। तो उन शक्तियों का नाम है, देवत कांड में खुलेंगी सारी बातें, आगे चलते हैं। अतः ये प्रवृत्ति अर्थे अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु वाक्य पूर्ण आगच्छन्ति पद पूर्णास्ते मिताक्षरेषु अनर्थका कम इम इत और उ, ये 4 निपात हैं, ये जो पहले निपात चले थे वो पूरे हो गए, अभी 4 निपात नए और आ रहे। ये क्या कह रहे हैं, कम है, इम है, इत है और उ है, अर्थात ये प्रवृत्ति अर्थ है। अर्थस्य प्रवृत्ति सती, प्रवृत्ति सदी नाम है परिसमाप्ते अर्थ है। प्रवृत्त कार्यम, कार्यम प्रवृत्ति नाम है पूर्णम अर्थ। अतः ये प्रवृत्ति अर्थ है अमिताक्षरेशु, अमिताक्षरेशु नाम है गद्येशु, मिताक्षर नाम पद्य, अत्र इयंत अक्षराणि सन्ति तस्मादेश छंद इति, तो एवं गद्येषु न भवति। तो अमिताक्षरेषु गद्येषु ग्रंथेषु गद ग्रंथेषु यत्र गद्यस्य प्रतिपादनं कृतं नाम धेयं नाम यथा योग दर्शनं, ये सर्वे गद्ये सन्ति। भवद्दृष्ट्या, अस्माकं दृष्ट्या छन्दात्मक इति, तत्र छन्दः प्रतिपादितः। के मन्यन्ते कर्मकाण्डिनः, कुत्रापि पठितं स्यात् भवता। ग्रंथेषु वाक्यपूर्णा आगच्छन्ति, वाक्यस्य पूर्ण, वाक्यम पूर्णम एव कर्तव्यो ये साम, ते वाक्यपूर्ण आगच्छन्ति। कुत्र वाक्य अलंकारे, वाक्य अलंकारे आगच्छन्ति, वाक्य अलंकारो भी भवति ना वा भवति गद्येषु भवति, यथा ई इंद्रम पश्य, इंद्रम पश्य न दोस्ते शोभनम ई इंद्रम पश्य इत्यादि। उत्तिष्ठ, हाँ, ते तत्र भवन्त, ते तत्र भवन्त, एवमपि वक्तुं शक्नोति महाभाष्यकार कि ऋषयः शिष्टा, ते तत्र भवन्त शिष्टा, ते शिष्टा भवन्ति, ते शिष्टा भवन्ति, एवमपि वक्तुं शक्नोति, निपातस्य प्रयोग कथम् इति, ते तत्र भवन्त शिष्टा, तो वाक्य अलंकारो भवति मतलब अलंकरोति वाक्यम। पश्य इंद्रम, ई इंद्रम पश्य, भो आगच्छ, आगच्छ एवं भो आगच्छ, ए आया ही, अरे बाला, बाला नाम कृते अरे वर्तते निंद, अरे आया ही इत्यादि। तो एते चत्वारा सन्ति, अथ ये प्रवृत्त्यर्थे अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु गद्येषु वाक्यपूर्णा वाक्यालंकार रूपेण पूर्णा आगच्छन्ति पदपूर्णास्ते मिताक्षरेषु, मिताक्षरेषु तेषां प्रयोग केवलं पदपूर्णार्थमेव वर्तते। कुत्र? छंदेषु, वेदे च। अनर्थका सन्ति, अर्थात तेषां अर्थो न वर्तते। कम, इम, इत, उ, यथा उच्यते कथम वर्तते, निष्पत्राश एवमेव स्यात्, निष्पत्राश चिद् नरो भूरितोका वृकादिव बिभ्यन्तो ववासिरे शिशिरम जीवनायकम्। घटना घटते कस्मिन् विषये, घटना है, घटना वर्तते कि एक परिवार में 10-20 बच्चे हैं, है ना, भयंकर सर्दी आ गई है, हेमंत ऋतु आ गई है, बर्फ पड़ी हुई है, तो उनकी कामना क्या होगी, वस्त्र भी नहीं है पहनने को, तो उनकी कामना क्या होगी जी,
हमें कपड़े मिल जाए पहनने के लिए,
या ये ऋतु चली जाए, गर्मी आ जाए, दो ही तो कामना होगी, अधिकतर कामना होती है कि ऋतु जो है ना ये चली जाए, ये कामना मुख्य होती है, वही मंत्र में कहा गया घटना को। निस्तत्राश, निष्काशित तत्राश येभ्य, ये शाम, जिनके वस्त्र निकल गए, अर्थात जिनके पास ओढ़ने आदि के वस्त्र नहीं है, तत्राश त्रायते येभ्य ते तत्रा, और आज जैसे रसुक तत्राश, जो त्वचा को बचाने वाले हैं वो कौन है, वस्त्र, और वो जिनके पास नहीं है, घटना किसी बात को करी, वो क्या है, निस्तक त्रास है। चित नरह इंद्र, चित नर, हाँ, चित इत नर, इत, इत का प्रयोग है ना, चित इत नर, इस प्रकार के मनुष्य, भूरी तोका, भूरी बहुनी तोका, ये शाम, जिनके तोका नाम है, संतान के कितने नाम है, 15 नाम है, इसलिए मैं कहता हूं बार बार याद करो, तुप तोकम तनिय तोक में तकमय शेष है अपने गया जापत्यम यहु सूनु नपात प्रजा बीजम इति पंचदश अपत्य कस्मिन अध्याय निघंट द्वितीय अध्याय। तो मनुष्य के 26 नाम है और उसकी संतान के कितने नाम है 15 नाम है। तो 15 नाम में एक तोका भी है, नहीं तो व्याकरण लगाते रहो तोका का अर्थ क्या है अगर वो याद नहीं होगा तो। अब अर्थ करने में सुविधा हो जाएगी अगर वो याद होगा तो भूरी तोका जिनके अधिक संतान है आजकल वो कौन है भारत में, विरकादिव ये जा रहे हैं। किसका नाम ले, विक्रम जी तो नहीं डरेंगे, किसी बालक का नाम ले, कोई भी डरने वाला नहीं, कहेंगे हम तो डरेंगे नहीं भेड़िए से, वैसे डरेंगे सारे। जयदेव जी को लेते हैं, जयदेव जी जंगल में जा रहे हैं, भेड़िया मिल गया तो क्या होगा, भेड़िया भाग जाएगा या आप भगोगे? आप ही भगोगे, पक्की बात है। कोई भी होगा पेड़ पे चढ़ेगा, बचने का प्रयास करेगा। कोई भी है, कोई भले ही बहादुरी दिखाने के लिए कह दे कि भाई मैं तो भेड़िए से लड़ूंगा, वो आपसे नहीं लड़ रहा है ना आप उससे लड़ रहे हैं। उपाय क्या है, दोनों में दूरी हो जाए, क्योंकि एक असुर प्राण है और दूसरा टकराएंगे तो विनाशी होगा। भेड़िए के अंदर असुर प्राण है, ये ध्यान देने की बात है। तो उसमें भेड़ जो भेड़िया है उससे आप क्या करेंगे, डरेंगे। तो ऐसे ये घर वाले भी डर रहे हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि हमारे पास तो वस्त्र नहीं। तो क्या कामना करेंगे वो, बिभ्यसंत है, बिभ्यसंत नाम है, डरते हुए। ववासिरे वासरी शब्द पुनर पुनर कामयन्ते इति ववासिरे कम शिशिरम जीवनायकम शिशिर ऋतो कामनाम कुर्वन्ति जीवनायकम नाम जीव प्राण धारणे तदर्थम अस्माकम प्राणा हेमन्ते नैनस्ययु तदर्थम शिशिरम जीवनायकम पुनर पुनर ववासिरे। तो शिशिर ऋतु को बार बार बुलाते हैं कि आओ और हमारे प्राणों को बचाओ। और यदि -50 डिग्री में कोई बैठा हो तो वो क्या कामना करेगा,
गर्मी आएगी।
हाँ, तो मंत्र किस बात को कह रहा, तो इत जो है ना यहाँ घटा दिया इन्होंने कि ये पद पूरण है, अनर्थक है। शिशिरम जीवनाय, शिशिरम सिरनाते समनातेरवा, या तो वो हिनस्ती है या शांति देती है, क्योंकि लगभग ठंड तो वहां भी होती है पर कम हो जाती है, फरवरी में जाके थोड़ी ठंड कम हो जाती है ना। नहीं और आगे चलो,
शिशिर में बसंत आता है, बसंत कब आता
है, उसी में आता है शिशिर में, फाल्गुन मास जो है ना वो शिशिर ऋतु में आता है। तो थोड़ी अब जो जनवरी की भयंकर ठंड होगी वो तो कुछ तो कम हो जाएगी ना, दिसंबर के अंत की और फिर जनवरी की है वो कम हो जाती है। कोहरा भी तभी पड़ता है, विमान की यात्राएं भी बंद हो जाती हैं उस काल में विदेशों में, क्योंकि इतने बर्फ पड़ जाती है। तो इसलिए शिशिर ऋतु की, शिशिर ऋतु आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य के लिए बड़ी उत्तम है, खूब व्यायाम करना चाहिए उसमें। आ इम एनम सृजता आसुते, आ है और इम है, इम जो है यहाँ अनर्थक है। तो आ इम एनम, आ आसमंतात एनम इसको सृजत है आसुते, सुते सोम में आसृजत है, सोम के निचोड़ने के बाद में इस घटना को करो, इस क्रिया को करो। तो इम जो है यहाँ अनर्थक है, पादपूर्णी है, गायत्री छंद है, गायत्री छंद है तो 8 अक्षर होने चाहिए, तो 8 अक्षर इसी के अनुसार घटते हैं, इनके द्वारा ही घटते हैं, इसका मतलब है अनर्थक है। आसृजत एनम सुते, सोम निचोड़ने के बाद में इसका निर्माण करो, अर्थात अंतरिक्ष का घटना वर्तते सोमस्य तो निर्माणम अभूत, तत्पश्चात सोमेन अस्य निर्माणम कुरु पदार्थेन इत्यर्थ है। तम इद वर्धन्तु नो गिरह, इद अत्र वर्तते, तम इद वर्धन्तु नह गिरह, नह अस्माकम गिरह वाणी वर्धन्तु, अस्माकम वाणी वर्धन्तु हमारी वाणी को बढ़ाओ, तम वर्धयन्तु नो गिरह, तम नह गिरह वर्धयन्तु उस हमारी इस वाणी को बढ़ाए, कौन बढ़ाएगा, स्तुतया, कर्ता कौन है इसका, स्तुतया, स्तुतया अस्माकम वाणी वर्धयन्तु, जब आप स्तुति करते हैं तब आपकी वाणी बढ़ती है। वाणी नाम है ज्ञान, वाणी के 56 नाम है वेद में, श्लोक है धारा इड़ा गौ गौरी गांधर्वी इत्यादि, हाँ तो उसमें 56 नाम है, तो 56 प्रकार से वाणी बढ़ सकती है, जितनी भी ध्वनि ब्रह्मांड में हो रही है वो 56 प्रकार की, इसका ये भी एक घटना है आदि देवी कर्थ में। क्योंकि वाणी वाचयति इति सतः। गिरो गिरणाते, गिरी को गिरी क्यों कहते हैं, गिरणाते निगरियति इति गिरी, क्योंकि ये वाणी जो है दोषों को खा लेती है और प्रकाशित भी कर देती है और स्तुति भी कर देती है। गिरी निगरने से बनाएंगे तो निगरणाती, आप मीठी वाणी बोलो तो क्या होगा, सत्व बढ़ेगा, सत्व बढ़ेगा तो रजस तमस कम हो जाएंगे तो दोष को खा जाएगी वाणी। कौन सी गिराएगी, आसुरी गिराएगी, हम तो सात्विकी में बात कर रहे हैं, आप उसका नाम ही मत लिया करो। न कश्चिद कश्चिन मित्रम, न कश्चिद कश्चिन रिपु, व्यवहारेणी जायन्ते मित्र व रिपवस्त था, संसार में ना कोई किसी का मित्र है ना कोई किसी का शत्रु है, आपका व्यवहार ही मित्र है आपका और आपका व्यवहार ही आपका, आप अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके मित्र हैं, गलत व्यवहार करोगे तो पशु पक्षी भी दूर भगते हैं, मनुष्य तो क्यों नहीं भगेगा, भगते हैं आप, देख लो उन पर प्रयोग करके। कुकुर को बुलाया ऐसे नाचता है पूंछ हिलाता है और थोड़ा सा कुछ ऐसे कि आप भोग के भगता है, ये प्रयोग है आप करके देख लेना, है ना, सबका अनुभव है। तो प्रेम की भाषा सत्य की भाषा वो भी समझता है, तो किसके लड़ना किससे झगड़ना किससे द्वेष करना, भूमि आर्यों के लिए दी है, आर्य बनाने का प्रयास करो जितना सामर्थ्य है। हाँ कोई आतंकवादी है शत्रु है उनको लिए मैं आपको कमजोर नहीं बना रहा, मैं आपस की बात कर रहा हूँ और आगे चलो। पर होता क्या हम आपस में क्यों और तो कोई मिलता समतसी तो अयम उते सम अतसी ऐसा है, अयम उ जो है निरर्थक है, ते तव कृते समतसी, अयम ते सम तसी, समतसी का अर्थ है संपत्सी, सम एक पुया पत्सी गच्छति, ये आपकी ओर आता है, तो उ जो है यहाँ निरर्थक है, इवो अपि दृश्यते। अब इसको आप घटना को देख लेना, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, इस जो है छोटा सा ही मंत्र है कि वर्चस्तिन्न ओहसे, जैसे हम आपको बुलाते हैं तो वैसे आप हमारी ओर आते हैं, मतलब जैसी घटना आप करते हैं वैसी घटना आपको वापस मिलती है, मंत्र इस बात को एक प्रकार से कह रहा है। आपने द्वेष किया तो आपको मिलेगा क्या द्वेष, आपने ईर्ष्या की तो मिलेगी क्या, ये गति की प्रगति है जिसको प्रतिक्रिया बोलते हैं, आपने द्वेष रूपी एक गति की तो आपको गति में किसकी वृद्धि होगी, आपकी द्वेष की वृद्धि होगी, द्वेष की वृद्धि होगी तो वो ये असुरों को देख लिया करो, फोटो वोटो तो देखे ही है कि ऐसे हो जाएंगे, इसलिए मननात मनुष्य है भाई, विचार करके काम करो कोई भी। इव अपि दृश्यते, इव भी क्या है अनर्थक दिखाई देता है, सुविदुर इव सुविज्जायते इव, सुविदु इव, इव का कोई अर्थ नहीं है, सुविदु का अर्थ वही है जो सुविदु इव का है, सुविदु सुष्टु विदु सुविदु, उसके समान यहां उपमा नहीं है। और सुविज्जायते सुष्टु विज्जायते, तो सुविज्जायते किसको होता है, जो सुपठित होता है, सीधी बात। काटक संगीता स्वामी जी महाराज, ये है कृष्ण अपने यजुर्वेद की दो विभाग हैं, शाखाएं तो दोनों में अनेक हैं, दो विभाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद है एक शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद की अभी दो शाखाएं हैं, माध्यम दिनी और वासनी चरण है। तो उसमें जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण का अर्थ कुछ काला भी करते हैं, काला तो वहां कुछ ज्यादा नहीं है, पर उसमें क्या है गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं का अर्थ बहुत प्रकार से है, वो अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, उसमें कुछ ऐसा है और वो घटनाएं होती हैं, हो रही हैं, होंगी, तो उसकी अनेक शाखाएं हैं, उसकी एक काटक संगीता भी है, मैत्रण जो भी मिलती हैं, काटक भी है, मैत्रण भी है, तैत्रेय भी है, ये उसकी अभी मिलती हैं, तो उसी की एक इसमें शाखा का अर्थ क्या है वो भी बताता, खेसय जो आकाश में सेने वाली शाखा, वेतेरवा तो वातेरवा, इसमें क्या है कि एक ऋषि ने देखा कैसे शाखाएं बनी, एक घटना बता रहा हूँ, इस पर भी घटना है कि एक मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद में माध्यंदिनी संगीता में कि भ्रातृव्यस्य वधाय, भ्रातृव्यस्य वधाय, शत्रु के वध के लिए कोई घटना हो रही है, तो उस घटना में क्या हुआ, भ्रातृव्य के द्वारा भ्रातृ अपत्यम भ्रातृव्य, जो भाई की संतान है वो भ्रातृव्य है यानी भतीजा, और व्यंत सपत ने, यदि शत्रु हो तो आदिउदात होगा और भतीजा हो तो तित स्वरित होगा, तो उसने सोचा कि कोई घटना ना हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, दिशतो वधाय, भ्रातृव्य शब्द को हटा दिया और दिशतो वधाय रख दिया, तो वो शाखा बन गई। ऐसी घटनाएं हैं। इसमें क्या है, इन शाखाओं में ब्राह्मण भी साथ में है, अलग से ब्राह्मण नहीं मिलता। तैत्रेय में, मैत्रणी में ब्राह्मण भी इनका साथ में है, कृष्ण यजुर्वेद का। और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ अलग है और एक नहीं है, शाखा अलग है। तो इसलिए मूल वेद जो माना गया है वो माध्यंदिनी संगीता को माना है, ये इसकी एक घटना है। शाखा चरण एक होता है, शाखा अनेक हो सकती है। नहीं, शाखाएं हैं, वेद की शाखाएं हैं। एक शतम अध्वर्यु शाखा, 101 यजुर्वेद की शाखाएं हैं। न वेद ही है ये, यजुर्वेद
कृष्ण नहीं,
कृष्ण नहीं, एक काला नहीं है,
शुक्ल है,
शुक्ल है ये। इसमें नाम इसलिए रखा हुआ कि कुछ उसमें घटनाएं ऐसी हैं जैसे तंत्र जैसी कुछ, पर वो घटनाएं ऐसे नहीं कि नहीं होती, पर कुछ मिलावट भी उसमें हो सकती है उस शाखा में। ब्राह्मण भी उसके साथ में अलग से नहीं है, ब्राह्मण कौन सा है और मंत्र कौन सा, ये जानना भी थोड़ा कठिनतम कार्य, विद्वान नहीं जान सकता। इसमें क्या है, दोनों अलग अलग। अगर महर्षि दयानंद जी हमारे पास ऋषि हैं जिन्होंने प्रमाणित किया कि यही असली वेद है, मुख्य वेद है, बाकी सब शाखाएं हैं। वैसे शाखा वृक्ष जैसी होती है, पर कभी कभी आजकल कई लगा देते हैं ना, आजकल आम पे भी कुछ, पीपल भी लग जाता है, ऐसा होगा कुछ। अथापि न एषे इद इत्येतेन संप्रज्यते परिभये, अथापि न इत्येषे, न जो ये निपात है, इद इत्येतेन इसके अर्थ के साथ में जो होता है परिभये, जब डरना अर्थ हो तो, परिते भय परिभये, मतलब डरने का अर्थ है कि अभी पराजित व्यक्ति नहीं हुआ, किंतु ऐसी घटना करेगा तो हार जाएगा, विनाश को प्राप्त हो जाएगा, सावधानी के रूप में है। कैसे है घटना बता रहे हैं। हविर भीर एके स्वरित सचनते सुनवंते एके सवनेशु सोमाम सचिर मदंत उत दक्षिणा भी ने जिम्मायंतो नरकम पता। हाँ, तो नरक में जाने की बात है यहाँ, कौन नरक में जाएगा वो बता रहे हैं, और कौन स्वर्ग में जाएगा वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। हविर भीर एके स्व इतः इतः स्व सचनते एके यजमाना आचार्य विद्वान से ब्रह्मचारी ने गृहस्थी ने सर्वे स्व इतः इतः स्व यहां से स्वर्ग को सचनते। कुछ लोग तो यहां से स्वर्ग में यानी द्युलोक में आहुति को भेज रहे हैं जो हवन कर रहे हैं। तो आचार्य जी मंत्र इस बात को कह रहा है कि आहुति जो है वो स्वर्ग में जाती है, यहां से आदित्य में जाती है, आदित्य नाम है स्वर्ग लोक। और सुनवंतु एके, एक आचार्य क्या कर रहे हैं या विद्वान जो भी हैं, सुनवंते के सवने सुसोमन, सवन में नाम है प्रातः सवन माध्यान दिन सवन, जो मैंने घटनाएं बताई थी। सोमयाग में कुछ विद्वान यजमान क्या कर रहे हैं, सोम रस को निचोड़ रहे हैं, ऊपर भी निचोड़ रहा है, घटना हो रही है वहां नित्य। सचिर मदंत उत दक्षिणा भी, सची नाम है वाणी नाम में पढ़ा है, ध्यान देने की बात है। सकलेरी शक्त सचिति सिद्ध्यति, सची वाणी द्वारा मदंत है आनंदिता भवंत उत दक्षिणा भी, और कुछ दक्षिणा मिल रही है किसको, ऋतविजों को, और वाणी सुन रही है किसको, छात्रों को या फिर यजमान के जो भी आए हुए हैं लोग वहां हैं। तो ये तो लोग कहां जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, किंतु यदि हम ऐसा आचरण नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे वो बता रहे हैं। फिर न इत जिम्मायंत नरकम पवता में, न इत, इत किस अर्थ में हुआ, यहां निषेध अर्थ में हुआ, और इत के साथ में जुड़ के हुआ, ध्यान देने की बात है। हमारा मुख्य विषय यह है, जिम्मा का क्या अर्थ है, कुटिल। न चेत, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, कुटिल आचरण करेंगे। तो जिम्मायंत कुटिल आचरण युक्ता वयम किंक नरकम पता में, हम नरक में गिरेंगे। न चेत, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, कौन सा, हवन नहीं करेंगे, वाणी नहीं सुनेंगे वेद की, और सोमयाग का निचोड़ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, संभावना में है, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, नरक में गिरेंगे। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर है, वो नरक में जाना चाह रहा है या स्वर्ग में जाना चाह रहा है। तो जो ऐसा करेगा वो नरक में जाएगा और जो ऐसा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो संभावना है यहाँ धातु इस अर्थ में। कुटे कोटिले कुटी दाहे, जो जलाती है नष्ट करती है वो, इसलिए वो कुटिल है। तो ऐसी वृत्तियां जो व्यक्ति हवन नहीं करेगा, व्यक्ति सोम याग नहीं करेगा, वेद नहीं पढ़ेगा, तो करेगा क्या? जो उसका असत्य ज्ञान है, असत्य ज्ञान के द्वारा वो दुनिया का भी नाश करेगा, अपना भी करेगा। विचार करें, अगर महात्मा गांधी जी को वेद का ज्ञान होता तो क्या इस देश की ये स्थिति होती? यदि वेद का ज्ञान होता, सोमयाग होते रहते, बड़े बड़े विद्वान तैयार होते, तो किसी शत्रु की हिम्मत थी कि वो भारत की ओर आंख उठा के देख ले? तो वही कह रहे हैं, तो तभी ये विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए कुटिल व्यक्ति शास्त्र न पढ़ना भी एक प्रकार से कुटिलता है, क्योंकि अज्ञानी रहेगा। अब आयुर्वेद नहीं पढ़ेगा, किस ऋतु में क्या खाएं, कैसे जिए, कैसे बोले, क्या व्यवहार करें, तो क्या होगा? असुरों को पैदा करेगा रोग के रूप में, वो उसका भी विनाश करेंगे, पड़ोसी को और दुख देगा। तो सारी बातें हैं, शास्त्री सारी चीजों का करता है, श्रेष्ठतम जो वस्तुएं हैं, और बाकी अपनी इच्छाएं जो हैं वो व्यक्ति का विनाश करते हैं, उसी बात को ये कह रहे हैं। तो हम नरक में ना गिर जाएं, इसलिए हमें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। नरक क्या है? नरकम न्यरकम नीचे गमनम, नरक का न्यरकम, और फिर नरकम को क्या खोला है? नीचे गमनम, जहां व्यक्ति नीचे नीचे जाता रहे। होना क्या चाहिए? उद्यानम ते पुरुष नवयानम, और हो क्या रहा है? अव्यान हो रहा है। व्यक्ति क्रोधित होता है तो किधर जा रहा है? ईर्ष्या करता है तो किधर जा रहा है? शास्त्र नहीं पढ़ता तो किधर जाएगा? और यदि ऋषियों की बात नहीं मान के घर वालों की और दूसरी उल्टी सीधी बातें मानता है तो कहां जाएगा? मैं घर वालों की निंदा नहीं कर रहा हूं, परिवार वाले हैं, जीवन निर्माण किया, सारा कुछ है। तो अगर वो शास्त्र से हटाए, वो दूसरे कामों में लगाए, तो महर्षि दयानंद ने क्या कहा है? गुरु की भी बात नहीं मानो, परिवार वालों की बात नहीं मानो। गुरु भी अगर शास्त्र के अनुसार आज्ञा दे रहा है, शास्त्र के अनुसार बात है तो मानो, नहीं तो सबसे बड़ा गुरु हमारा सह पूर्वे सामपि गुरु अनुच्छेदा, और बाद में दूसरे गुरु कौन से हैं? महर्षि दयानंद जी, उन्होंने जो हमारे लिए नियम बने उनका पालन करो। बाकी कोई विद्या से हटाए तो किसी की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उसका अपना अज्ञान, अज्ञान व्यक्ति की बात नहीं माननी चाहिए। और नास्मिन अत्र रमणम स्थानम अपि अल्पम अस्तित्व वा, यहाँ कोई रमण की चीजें भी नहीं, अंधेरे में रहते हैं नरक में, तो वहां कुछ ऐसी चीज भी नहीं, कीड़े खाएंगे और पौराणिकों का नरक देखे तो उसी को घटा लो थोड़ी देर। रो रहा नरक है, रो रुयते शब्दम कुरवंती यत्र सत्सर रो रहा हुआ, बचाओ बचाओ, कीड़े खा रहे हैं अभी, आंख में जल रहे हैं, ये करो इससे बचाओ। कल्पना है, ऐसा नहीं है, पर ये नरक ही है। अज्ञानी व्यक्ति नरक में जीता, स्वर्ग में कहाँ जीता? मैं ये नहीं बता रहा कि ऐसा ही वहां है नरक, पर नीचे ही गमनम, नीचे जाएगा। और अस्थानम अपि अल्पम अस्ति, एक कमरे में 20 लोगों को घुसा दिया जाए और कमरा हो 12x12 का, तो नरक में रह रहे हैं स्वर्ग में रह रहे हैं, और एक ही शौचालय और खाने के लिए एक ही समय भोजन मिले तो क्या होगा? थाली भी एक ही हो और रोज वही मिले, दाल का पानी और सूखी हुई रोटी, तो ऐसी जगह आप रहना चाहेंगे? तो उठो, शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्री वहां ले जाएगा। अथापि न च इत्येष इदित्येतेन संप्रज्यते अनुपृष्टे, अथापि न च इत्येष, यह जो है इत्येतेन संप्रज्यते अनुपृष्टे, अनुपृष्ठ में भी इसका संबंध हो जाता है। न चेत सुराम पिबंती इति, यदि सुरा नहीं पीते तो क्या हो जाता? स्वर्ग में रहते, सुखी रहते, सुरा पी ली इसलिए क्या हो गया? अब पश्चाताप करे, पिटने के बाद अकल आती है, मैंने आज भी बताया था, पहले ही बुद्धिमान को पहले ही आ जाती। तो ये इसका नकार का यहां संबंध हो गया। क्या पूछ, क्या हुआ भाई, अनुपृष्ठ कैसे होगा यहां? हाँ, क्या हालत बना ली है आपने? अरे भाई, अगर ये नैचे सुरा पीबती तो हमारे की तरह सुखी रहता, नरक में रह रहा है। कई बार तो अपना जो है ना, कुत्ते भी कार्य कर जाते हैं रोड पे पड़ा हो तो, है ना? तो इसलिए सुरा सुनोते, जिसको गंदी संदी चीजें मिला के निचोड़ा जाता है। और एवं उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, ते उपेक्षितव्य। इस प्रकार से अनेक उच्चे वचेषु अर्थेषु बहु प्रकार से अर्थेषु निपतन्ति अर्थम बोधयन्ति तस्माद् निपाता। तो ये चार प्रकार का विभाग इन्होंने बता दिया, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। जो घटना थी निरुक्त के अंदर वो पूरी हो गई है भूमिका के रूप में। अब इनकी आगे विशिष्ट व्याख्या मंत्रों में चलेगी। जो कल का पाठ है वो सब देख के आए, क्योंकि कल ये पहला पाद भी पूरा हो जाएगा, ये जो अगले वाला पाद चलेगा चौथा, और पांचवे का भी कुछ हो जाएगा, क्योंकि कल मंत्र नहीं है कोई भी, मंत्र की कोई घटना नहीं, केवल आक्षेप किए हैं महर्षि गार्ग्य को, कहो या आचार्य गार्ग्य को, साक्टायन के और निरुक्तों के ऊपर, कि सारे शब्द जो हैं वो नाम से सिद्ध नहीं होते। ये गार्ग्य का मत है और कुछ वैयाकरणों का, पाणिनि का भी मत है। किंतु साक्टायन और निरुक्ताचार्य क्या मानते हैं कि सारी घटनाएं घटित होकर शब्द बने, मतलब घटनाएं शब्द हैं तो कोई शब्द की घटना है, और वो घटना है तो वो घटना नित्य है, जब वो घटना नित्य है तो उस नित्य घटना को समझने के लिए शब्द को धातु होना जरूरी है। तो ये चर्चा है, सात आक्षेप है, सात ही समाधान है, तो ये बहुत जल्दी आधा घंटे में हो जाएगा। आप सारा समझते हैं, केवल वो संबंध मात्र जोड़ना है। ओम, एक बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। तो ईश्वर की कृपा से आज हमारे तीन पाद पूरे हो गए, तीन और बचे हैं जो लगभग छह दिन में पूरे हो जाएंगे। आगे ज्यादा कार्य नहीं है, समझना है केवल चीजों को। तो उसके बाद में दूसरे अध्याय का पहला पाद चला करके परीक्षा होगी, क्योंकि वहां तक भूमिका है।